ओम अज्ञानतिनिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर भक्तवृन्द हरे राधे मे जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी कौन तप जय राधा माँ माधव कुंज बिहारी,
जय राधा 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
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 जय राधा माधव यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन गोपी जन
वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी
यमुना तीरवन चारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की।
श्री गौरनिताय की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय आठ श्लोक क्रमांक 20 से प्रारंभ करेंगे।
तथा परम हंसाना परम हंसाना
मुनि नाम मलात्मना
मुनि नाम मलात्मना
भक्ति योग विधानार्थम
भक्ति योग विधानार्थम
कथम पश्ये मही स्त्रिय
कथम पश्ये मही स्त्रिय
कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च
देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय
नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः
गोविंदाय नमो नमः
नमः पंकजनाभाय
नमः पंकजनाभाय
नमः पंकजमालिने
नमः पंकजमालिने
नमः पंकजनेत्राय
नमः पंकजनेत्राय
नमस्ते पंकजांग्रये
नमस्ते पंकजांग्रये
यथा ऋषिकेश खलेन देवकी यथा
ऋषिकेश खलेन देवकी
कंसेन रुद्वाति चिरं शुचार्पिता
कंसेन रुद्राति चिरं शुचार्पिता
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो
त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा
त्वयैव नाथेन विपद्गणा
विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना
विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना
असत् सभाया वनवास कृच्छत
समाया वनवास कृच्छत
मृधे मृधे नेक महारथास्त्रो
मृधे मृधे नेक महारथास्त्रो
द्रोण्यस्त्रतश्चास्महरेभिरक्षिता
स्त्रतश्चास्महरे विरक्षितः
विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना
विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना
असत् सभाया वनवास कृच्छत
असभाया वनवास कृच्छत
मृधे मृधे नेक महारथास्त्रो
मृघे मृघे ने कमहारथास्त्रो
द्रोण्यस्त्रतश्चास्महरेभिरक्षिता
द्रोण्यस्त्रतश्चास्महरेभिरक्षिता
निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्नी प्रप्रसुञ्छविं प्रोद्विकृत्य भुजद्वयं हरिहरि
सिंचन्त भूर्वेतलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमः श्रीगौरचन्द्रं नमः श्रीगौरचन्द्रं नमः वंशी विमोषितकरा नवनीरदाभा फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने यस्या कदापि वसनान् चलखेलनोत्थ धन्याति धन्यपवने न कृतार्थमानि योगी मधुर्गमगति मधुसू यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामो धर्माधवेत्रि गृहे गृहे गो पवदूकदम् सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नाम निपठन्ति नित्यं गोविन्द नामो धर्मा प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता च सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत् किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महतभी यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमोष पूरुष भूमतेर गुणानशो रसशो रसात्मक सोलंक श्रेष्ठ भगवान वचांसि मे।
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस पंचम दिन में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका पठन अध्ययन और श्रवण करने से जीव समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। कलयुग में प्रायः सब लोग पाप कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो पाप न करता हो। शास्त्र में कहा गया है कुछ पाप ऐसे हैं जो न चाहते हुए भी जीव कर ही बैठते हैं। जैसे कुछ माताएं घर पर झाड़ू लगाती हैं, न चाहते हुए भी उस झाड़ू लगाने में असंख्य जीव मर रहे हैं। सुबह उठकर जब हम स्नान करते हैं तो स्नान के द्वारा जो गर्म पानी नाली में जाता है उस पानी के द्वारा असंख्य जीव की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं हम पाप नहीं करते हैं, परंतु भक्तों इस संसार में एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए हमें चलना पड़ता है। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो उस पांव के नीचे असंख्य छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। तब भी कोई कहे कि मैं पाप नहीं करता हूं तो भक्तों सांस लिए बिना कोई जी नहीं सकता है। और जब हम सांस लेते हैं तो इस सांस के माध्यम से असंख्य जीव हमारे अंदर जाते हैं और मर जाते हैं। सब लोग पाप कर रहे हैं, पाप से कोई मुक्त नहीं है। और यह पाप कब तक हमारे हृदय में रहेगा? पाप पापी सब लोग हैं, क्योंकि इस संसार में सब लोग दुखी हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि संसार में सब लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि पाप करते हैं। और यह पाप तब तक हमारे हृदय में रहेगा जब तक हम भागवत कथा नहीं सुनेंगे। तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना। भगवान श्री विष्णु अपने मुख कमल से कहते हैं कि तावत तब तक यह पाप हमारे हृदय में रहते हैं जब तक यावत न श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम श्रुतम। जब तक हम श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से समस्त पापों से हम मुक्त हो जाते हैं, परंतु एक शर्त है। वह कथा कैसे सुननी चाहिए? यावत न श्रूयते सम्यक, सम्यक रूप से भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। सम्यक का अर्थ होता है पूरा पूरा। पूरा पूरा का अर्थ होता है हमारी मन बुद्धि कान इत्यादि सब कुछ भागवत सुनाने में लगाना चाहिए, तब जाकर हम समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं। कुछ लोग पापों से मुक्त होने के लिए गंगा यमुना काशी और अलग अलग तीर्थों में तीर्थाटन करते हैं, परंतु कितने भी तीर्थों में स्नान कर लो तीर्थाटन कर लो, यह सब तीर्थों में स्नान करने से तीर्थाटन करने से उतना फल नहीं मिलता है जितना भागवत कथा सुनने से मिलता है। न गंगा न गया काशी पुष्कदम न प्रयागकम। गंगा जो तीनों भुवन को पवित्र करती है, काशी जो शिव जी का शहर है, और प्रयाग जहां पर तीनों नदी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयाग, काशी और गंगा। शुक शास्त्र कथा यश्च फलेन समतानये, ये सभी तीर्थों में तीर्थाटन करो। और एक और भगवान की लीलामय श्रीमद् भागवत की कथा रखो, श्रीमद् भागवत की कथा के फल के सामने ये सभी तीर्थाटनों के फल कुछ है ही नहीं। भागवत सुनना बहुत बड़ा तीर्थ है और साधु लोग भागवत सुनना पसंद करते हैं। वास्तव में बड़े बड़े संत साधु भागवत सुनने वालों का अनुमोदन करते हैं, क्योंकि जीवन मिला है भागवत सुनने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए। सवाक यातस्य घृणान द्रुणेते करो च तत्कर्म करो मनश्च। इतना सुंदर मनुष्य देह प्राप्त हुआ है और भगवान ने बहुत सुंदर कान दिए हैं, इसलिए इस कानों के द्वारा नित्य निरंतर भगवान की कथा सुननी चाहिए। भक्तों, यदि बहुत बहुत विचार किया जाए तो भगवान ने हमें मुख एक ही दिया है और कान दो दिए हैं। भगवान की यह इच्छा है कि संसार का व्यक्ति कम से कम बोले और ज्यादा से ज्यादा मेरी कथा सुने। इस प्रयोजन से भगवान ने श्रवण इंद्रिया बनाई है। तो बहुत सुंदर यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, आइए भागवत कथा सुनकर इस मनुष्य देह को पावन और पवित्र करें। हम यहां पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय की कथा सुन रहे हैं और यह कथा इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट परम युद्धवीर योद्धा पांडवों के मां कुंती की कथा है। माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रही है, स्तुति कर रही है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इसे बहुत बड़ा अंग माना गया है। तो कुंती देवी के द्वारा प्रार्थना, और ऐसी प्रार्थना, वैसे तो भागवत में बहुत लोगों की प्रार्थना है, काली नाग के पत्नी की प्रार्थना, ब्रह्मा जी की प्रार्थना, वृत्रासुर की प्रार्थना, बहुत बहुत प्रार्थना श्रीमद् भागवतम में है, पितामह भीष्म की प्रार्थना। परंतु सभी प्रार्थनाओं में शिरमौर यदि कोई है तो वह है महारानी कुंती की प्रार्थना। इसीलिए वेदव्यास जी को महारानी कुंती की प्रार्थना सर्वप्रथम भागवत के प्रथम स्कंद में और सर्वप्रथम रखनी, श्रेष्ठ है यह प्रार्थना। तो महारानी कुंती भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना करती हैं कि प्रभु तुम आदि पुरुषम, आप आदि पुरुष हो, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप सभी जीवों के लिए अलक्ष्य हो, अंतर बहिर्वस्थितम, आप इस संसार के अंदर और बाहर सभी जगह पर विराजते हैं, परंतु दुर्भाग्य है उस जीवों का, आप सभी जगह पर हो परंतु संसार के जीव आपको न लक्ष्य से नहीं देख सकते हैं। क्यों संसार के लोग आपको क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि माया जवनी काचनम ज्ञादोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। क्योंकि आप योग माया और महामाया, संसार के लोग महामाया से बंधे हैं और आपके ऊपर योग माया का पर्दा है। सब लोग माया में फंसे होने के कारण आपको नहीं समझ सकते हैं, और जो नहीं समझ सकते हैं उसे मूढ़ कहा गया है। मूढ़ लोग आपको नहीं जान सकते हैं। तो देवी कुंती ने कल तक कहा था कि प्रभु मूढ़ लोग मूर्ख लोग आपको नहीं समझ सकते हैं, परंतु मूर्ख लोग की तो बात छोड़िए, साथ साथ तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मनाम, मूर्ख लोग के साथ साथ तथा परमहंसा नाम परमहंस भी आपको नहीं समझ सकते हैं, और मुनि वो भी आपको समझने में धोखा खा जाते हैं, और अमल आत्मनाम जिसकी आत्मा मल रहित है इसे अमल आत्मनाम भी आपको नहीं समझ सकते। बड़े बड़े मुनि सिद्ध योगी तपस्वी परमहंस अमल आत्मनाम ये सब बड़े बड़े लोग ज्ञानी विद्वान पंडित होते हुए भी आपको नहीं जान सकते हैं, आपका क्या प्रयोजन है इसे नहीं जान सकते हैं। ये सत्य बात है कि भगवान कभी कभी ऐसी लीला करते हैं, बड़े बड़े लोगों को चक्कर में डाल देते हैं। देखिए कल ही भगवान ने एक लीला की, अश्वत्थामा ने पांडवों पर और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया। अब अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने की प्रेरणा देने वाले कौन हैं? उनके हृदय में रहने वाले परमात्मा। गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबके हृदय में रहता हूं और मुझसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है। अद्भुत अद्भुत भगवान की लीला है। एक और अश्वत्थामा को प्रेरित करते हैं ब्रह्मास्त्र चलाने में, और दूसरी ओर वही कृष्ण पांडवों के और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। प्रभु ये समझ में नहीं आ रहा, बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं। एक और भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को बहुत प्रेम करते हैं, सुभद्रा को बहुत प्रेम करते हैं, परंतु सुभद्रा का पुत्र जब अभिमन्यु मर रहा था तो उसे मरने दिया, बचाया नहीं। एक और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से बहुत प्रेम करते हैं, कृष्णा कहते हैं अपना नाम द्रौपदी को दे दिया, और इतना प्रेम करने वाली द्रौपदी के 5 पुत्रों को नहीं बचाया। भगवान की लीला भी अद्भुत है, बड़े बड़े लोग भी चक्कर में आ जाते हैं कि क्या ये भगवान है और इस प्रकार से भगवान क्यों करते हैं। एक और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पिता को मारने के लिए चक्र उठाते हैं, और दूसरी ओर भगवान भीष्म पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, और कुछ दिन के बाद युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पिता के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए लेकर जाते हैं। तो भगवान कब क्या करना चाहे इसका कोई भरोसा नहीं। दशम स्कंद में काली नाग की पत्नियां यही प्रार्थना करती है, प्रभु प्रभु आप कब किस पर कृपा कर दो इसका कोई भरोसा नहीं है। कहती हैं कि बड़े बड़े योगी मुनि ध्यान करते हैं, योग करते हैं, आपके चरण का स्मरण करते हैं, परंतु वह स्मरण भी नहीं हो सकता है। यत्न करते रह जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत साधन करते हैं, फिर भी आप उसे प्राप्त नहीं होते हो। और यह हमारा पतिदेव, यह काली नाग, कुछ आज तक जब तक हमें पता है तब तक इसने कुछ नहीं किया है, और हमें नहीं लगता है कि पूर्व जन्म में इसने कुछ किया होगा, क्योंकि पूर्व जन्म में यह काली नाग ने यदि पुण्य किया होता तो नाग थोड़ी ना होता, मनुष्य बनता। पूर्व जन्म में इसने कुछ नहीं किया है, और इस जन्म में जब से विवाह हुआ है तब तक एक काम अच्छा नहीं किया है, और अभी भी वर्तमान में यह आपको मारना चाहता है, फिर भी प्रभु आपने अपने श्री चरण हमारे पति देव के सिर के ऊपर रख दिए। आप कब कब कहीं किस पर कृपा कर दो इसका कोई निश्चित नहीं है। एक और दुर्योधन ने 56 भोग बनाकर बैठे थे, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाया, तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के भोग को छोड़कर विदुर जी के घर पर जाकर केले के छिलके खाए। तो प्रभु आप कब क्या करना चाहते हो बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाते हैं। बड़े बड़े लोग की बुद्धि चक्रे में फंस जाती है। इसलिए मूठ लोग न लक्ष्य से साथ साथ तथा परम हंसा नाम न लक्ष्य से। मूठ लोग तो नहीं जानते हैं परंतु परम हंस भी आपको नहीं जानते हैं। और मुनि नाम न लक्ष्य से मुनि भी आपको नहीं जानते। और अमल आत्म नाम तथापि न लक्ष्य से अमल आत्म नाम भी आपको नहीं जानते। इस प्रकार से महारानी कुंती भगवान का प्रभाव कर रही हैं कि आपका कब क्या प्रयोजन होता है ये कोई नहीं जानता है। भक्तों इस श्लोक के कुंती महारानी के इस वाक्य के तीन भाव है। आचार्य गण तीनों भावों को प्रस्तुत करते हैं। एक भाव तो यह है कि प्रभु हे कृष्ण आपके बारे में परमहंस मुनि और अमल आत्म नाम नहीं जानते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक का दूसरा भाव बताते हैं कि इस श्लोक में देवी कुंती सबसे बड़ा रहस्य खोल रही है भगवान का। भगवान का कुछ रहस्य है, भगवान की भी कुछ सीक्रेट है, परंतु इस श्लोक में महारानी कुंती भगवान की सीक्रेट भगवान की पोल खोल देती है। वास्तव में बड़े बड़े मुनि बड़े बड़े परमहंस अमल आत्मनाम इस पोल को नहीं खोलते हैं, भगवान की सीक्रेट को खोलते नहीं है। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आखिर देवी कुंती स्त्री है ना, और स्त्री के पेट में कोई बात टिकती नहीं है। इसलिए स्त्री होने के नाते भगवान की पोल जो सीक्रेट रखनी थी वो खोल दिया। ये सत्य बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब से युधिष्ठिर महाराज ने स्त्री को श्राप दिया है उस दिन से स्त्री के पेट में कोई बात टिकती नहीं है। चलिए त्रेता युग में राजा दशरथ स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए थे। अपनी पत्नी कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे, कैकेयी को साथ में लेकर गए और वहां पर युद्ध हुआ। और युद्ध करते करते कहा जाता है कि दशरथ के रथ से उस चक्की का जो खिल्ला था वो निकल गया। रथ गिरने ही वाला था परंतु कैकेयी ने रथ को गिरने से बचा लिया। राजा दशरथ कुछ ही देर में असुरों का विनाश करके विजयी हुए। जब राजा दशरथ विजयी हुए तब अपनी पत्नी से कहने लगे कि देवी मैं आपके इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आपके कारण ही मेरी विजय हुई है। इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। एक नहीं दो चीज जो चाहिए वो मांग लो। तब कैकेयी कहती है कि प्रभु देखिए कैकेयी का क्या भाव है। वास्तव में कैकेयी अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम राम से करती थी। सत्य बात है। कैकेयी ने वहां पर कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कैकेयी ने कहा कि प्रभु इस संसार में सबसे ज्यादा मैं दो व्यक्ति से प्रेम करती हूं, एक तो मेरे राम से और आप से। ये दोनों मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी दशरथ ने कहा कि नहीं ले लो जो चाहिए वो ले लो। तब कैकेयी ने कहा एक काम करो, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए परंतु जब समय आएगा तब मैं आपसे मांगूंगी। इतनी घटना समाप्त हुई और स्वर्ग से राजा दशरथ इस पृथ्वी पर आए अपने घर पर। और आए तो तुरंत कैकेयी की एक दासी थी जिसका नाम था मंत्रा। कैकेयी के पेट में एक मिनट भी वो बात नहीं टिकी, तुरंत सारी बात मंत्रा को बता दी। आचार्य गण कहते हैं कि यदि कैकेयी ने स्वर्ग में हुई बात को मंत्रा को नहीं बताया होता तो राम को वनवास नहीं हुआ होगा। देखिए स्त्री के पेट में बात नहीं टिकती है तो कितना अनर्थ हो जाता है। यदि कैकेयी ने मंत्रा को बताया ही नहीं होता तो जिस समय राम का राज्याभिषेक होने वाला था उस समय मंत्रा के द्वारा कैकेयी के कान भरे न जाते। भगवान श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक हो रहा था और कैकेयी के के पास मंत्रा आई और कान भरने लगी कि बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। राजा दशरथ राम को राजा बना रहे हैं। तो कैके ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो मेरे पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम राम से करती हूँ। परंतु मंत्रा ऐसी इतनी कुटिल थी, इतनी दुष्टा नारी थी। वास्तव में स्त्रियों के लिए एक बहुत सुंदर उपदेश है कि कभी भी संग करना है तो भक्त के साथ करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहते हैं, असत संग त्यागा यही वैष्णव आचार। एक वैष्णव एक भक्त का आचार क्या होता है कि वह असत संग को त्यागे और भक्तों के साथ संग करे। देखिए मंत्रा जैसी कुटिल स्त्री को कैकेयी ने सारी बात बताई थी। वास्तव में जब राम को वनवास दे दिया गया तब प्रश्न उठा कि ये मंत्रा कौन है, कहां से आई है। किसी को नहीं पता था मंत्रा कौन से गांव की है, कौन से जाति की है। ऐसी मंत्रा के साथ कैकेयी ने संगत की। मंत्रा ने कैकेयी के कान भरे। कैकेयी कहने मंत्रा कैकेयी को कहने लगे कि देखो, यदि राम राजा बन गए तो कौशल्या राज माता बन जाएगी और फिर केवल राजा दशरथ कौशल्या के साथ ही रहेंगे, आप तो दूध की मक्खी हो जाओगी, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार से बहुत बहुत गलत गलत बात बताकर उनके कान भरे और अंत में मंत्रा के वाक्य से कई कई प्रभावित हो गई। अपने पति को बुलाया और जिस समय राम का राज्याभिषेक होने की तैयारी और उसी वक्त उसे 2-3 घंटे पहले दशरथ को कहती हैं कि पतिदेव याद है आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, हाँ मांग लो। तब कई कई कहती हैं कि आप मांग लो तो बहुत बार कहते हो, कभी दिया भी है आपने? आप राम की कसम खाओ और राम की कसम खाकर कहो कि मैं आपको जरूर दूंगा। सबसे पहले राजा दशरथ ने राम की कसम खाई और तब कैकेयी मांगती हैं कि सबसे पहले मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। राम राजा नहीं बनेगा, मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा। तब दशरथ ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, राम तो वैसे भी राज्य के लोभी नहीं है, ठीक है आपके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। अब दूसरा क्या चाहिए? वास्तव में कभी भी किसी भी पति को अपनी पत्नी को इतना चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए कि जो चाहिए वो मांग लो। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पति कोई भगवान नहीं है कि अपनी पत्नी को कहे कि जो चाहिए वो ले लो। पति भी कुछ बंधे हुए हैं, कुछ मर्यादा में है, परंतु दशरथ जो चाहिए वो मांग लो। तब कैकेयी ने मांगा और जैसे ही कैकेयी ने मांगा दशरथ जी के प्राण से निकल गए, बेहोश हो। क्या मांगा? ताप संवेश
उदासी।
तपस्वियों के वेश में राज घराने को त्याग कर 14 साल के लिए राम को वन में भेज दो। तो भक्तों में यह कहना चाहता था कि कैकेयी के द्वारा राम को वन में भेजा गया और दशरथ की मृत्यु हो गई, इसका कारण क्या था? कारण यही था कि कैकेयी के पेट में वह बात नहीं टिकी जो स्वर्ग में होकर आए। वैसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बड़े बड़े परमहंस मुनि अमल आत्मा नाम भगवान के इस रहस्य को छिपा कर रखे थे, परंतु देवी कुंती इस रहस्य को प्रकट कर रही हैं। रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं और भगवान का अवतार लेकर मुनि नाम अमल आत्मा नाम और परम हंसों को ज्ञान क्यों प्रदान करते हैं। देवी कुंती कहती हैं कि वास्तव में भगवान ऐसी लीला करते हैं कि भगवान की लीला से परम हंस मुनि और अमल आत्मा नाम ये सब लोगों का मन भगवान की लीला में लगे। क्योंकि यदि भगवान साधारण लीला करते तो उसके ऊपर कोई विचार ही न करता, परंतु भगवान ऐसी रहस्यमय लीला करते हैं जिससे बड़े बड़े लोग इसे समझने में अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, अपनी इंद्रियां लगाते हैं। और भगवान के समझने के लिए जब तक मन इंद्रिय और बुद्धि लगी रहती है तब तक व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था में होता है और धीरे 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 करते वे पवित्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार बड़े बड़े लोगों का मन भगवान में लगे इसलिए भगवान ऐसी रहस्यमय लीला करते हैं। और भगवान में मन लगकर व्यक्ति कैसा बनता है? कहते हैं परम हंसा नाम, भगवान का भजन करके परम हंस बन जाता है। परम हंस का अर्थ क्या होता है? हंस का स्वभाव होता है दूध और पानी को अलग कर देना। ठीक उसी प्रकार जो हंस समान इस सृष्टि में लोग रह रहे हैं, वे इस जगत में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक जड़ वस्तु और एक चेतन वस्तु। जो जड़ और चेतन को अलग अलग देखते हैं उसे हंस समान माना जाता है, परंतु परम हंस उसे कहा जाता है जो जड़ को छोड़ देते हैं और चेतन तत्व को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं उसे परम हंस कहा जाता है। वास्तव में चेतन एकमात्र आत्मा और परमात्मा है जो अपने स्वरूप को जानकर आत्म साक्षात्कार कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसे परमहंस कहा जाता है। भगवान का भजन करने वाला परमहंस है। इस श्लोक के तात्पर्य में ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस कलयुग में परमहंस बहुत कम देखने मिलते हैं और कौवे के समान लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं। प्रायः इस कलयुग में परमहंस नहीं है, कौवे की संख्या ज्यादा है। कौवे का अर्थ कव्य का अर्थ होता है कि कौवा उसी जगह पर जाकर बैठता है जहाँ पर कचरा कूड़ा हो, जहाँ कचरा पड़ा हो वहां पर कौवा जाकर बैठता है। आज का मनुष्य सबसे पहले सुबह उठकर जगकर न्यूज़पेपर अखबार पढ़ता है। वास्तव में शास्त्रीय भाषा में अखबार को कचरा कहा जाता है। दुनिया भर की गंदगी उसमें होती है। क्या होता है, आज आतंकवादी के द्वारा इतने लोग मर गए, आज इसके घर से इतनी चोरी हुई, आज पाकिस्तान वालों ने ये हमला किया, वहां पर उस गली में दो लोग झगड़ पड़े। इस प्रकार से दुनिया भर का कचरा, दुनिया भर की गंदगी उसमें होती है। ये हीरो ने ये हीरोइन से यह कहा और उतना कहते ही दोनों में प्रेम हो गया। ये हीरो हीरोइन प्रेमी थे, विवाह हुआ था, लेकिन दोनों में झगड़ा हो गया। दो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उसमें बहुत बड़ी दरार हो गई। बताइए इसमें क्या अच्छा लगा आपको? दुनिया भर का कचरा सुबह हमारे घर पर आता है और हम उसे खोलकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग तो बिना ब्रश किए नहाए धोए उसका अखबार का दर्शन करते हैं। हमारे आर्यवर्ष की, भारतवर्ष की संस्कृति है कि सबसे पहले उठकर गुरु को प्रणाम करना चाहिए, तत्पश्चात पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए, तत्पश्चात स्नान करना चाहिए और बाद में भगवान का दर्शन करना चाहिए। परंतु लोग अखबार का दर्शन करते हैं। तो जो लोग सुबह उठकर अखबार का दर्शन करते हैं, टीवी देखते हैं, मंत्रालय में क्या हो रहा है, झगड़ा के अलावा कुछ नहीं, कुर्सी हाथ में लेकर झगड़ते रहते हैं। और क्या बताएं, वहां के लोग लाइव प्रसारण करते हैं कि देखिए मंत्रालय में कितना झगड़ा हो रहा है। और इसी यह पूरा दुनिया भर का कचरा देखते हैं। वास्तव में कलयुग के लोग परमहंस नहीं, कौवे हैं। ये प्रभुपाद जी का कहना है। परमहंस उसे कहा जाता है जो सुबह उठकर भगवान की स्तुति करे, भगवान का नाम ले, भागवत पढ़े, गीता का पाठ करे। और बाद में महारानी कुंती कहती है मुनि नाम। मुनि का अर्थ होता है मुनि मननशीला। जो मनन करे उसे मुनि कहा जाता है। तो देखा जाए तो मनन तो सब लोग करते हैं। एक बालक मनन करता है कि मुझे कितना होमवर्क दिया गया है। एक रिक्शा वाला मनन करता है, बनिया वाला मनन करता है, डायमंड वाले मनन करते हैं कि आज कितना बिकेगा। सब लोग मनन करते हैं। तो क्या सब लोग मुनि हैं? नहीं, मुनि नहीं, ये तो मुनिम है। मुनि मननशिला जो 2400 घंटा निरंतर भगवान श्री कृष्ण की लीला का मनन करते हैं, भगवान के नाम का मनन करते हैं, उसे मुनि कहा जाता है। और अमल आत्मनाम, महारानी कुंती कहते हैं अमल आत्मनाम। अमल आत्मनाम का अर्थ होता है अमल, मन का अर्थ आप सब लोग जानते हैं और आत्मा का भी अर्थ जानते हैं। परंतु इसमें अप्रत्यय लगा है कि जिसकी आत्मा मल रहित है इसे अमल कहा जाता है। जिसकी आत्मा मल रहित है इसे अमल आत्मनाम कहा जाता है। तो फिर आत्मा में मल क्या है? आत्मा में, मन में मल है राग और द्वेष। इस संसार में व्यक्ति जब अज्ञान में फंस जाता है, माया में फंस जाता है, तब अपने नित्य स्वरूप को भूलकर वे इस शरीर को ही मैं समझने लगता है। और शरीर को जब मैं समझता है तो शरीर से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उसे मेरा समझने लगता है कि ये मेरा है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा फैमिली और वो सब दूसरे का, बाहर का। ये कब हुआ? जब शरीर को मैं मानने लगता है। और ये तो निश्चित ज्वलंत प्रमाण है। आप देखोगे कोई व्यक्ति अपने छोटे से पुत्र को खिला रहा है, खेल रहा है, यदि वो टट्टी पेशाब कर दे तो वो पिता इतना दुखी नहीं होगा। उस अपने पुत्र के, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अपना पुत्र यदि सिर के ऊपर सुसु किया है तो उसे गंगा जल के समान समझेगा। और दूसरे का पुत्र यदि रास्ते में भी सुसु कर रहा है तो करेगा, अरे छी छी गंदा गंदा, इसे लेकर जाओ यहां से। क्यों भाई? दोनों पुत्र है, दोनों बच्चे हैं, परंतु ये तो मेरा है और वह पराया है। तो जो हमारा है उसके प्रति राग प्रेम और जो पराया है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। तो आत्मा में मन में मौल क्या है? राग और द्वेष। जो अपना है जो अपने हैं उसके प्रति प्रेम और पराये हैं उसके प्रति द्वेष। यही है आत्मा का मौल। और एक दृष्टांत दूं, जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं सबको पता होगा, मान लीजिए चरनी रोड से 8 जन चढ़े एक साथ ग्रुप में, एक साथ 8 जन चढ़े ग्रुप में तो तुरंत गेट विंडो पकड़ लेंगे, सीट पकड़ लेंगे, 4 जन यहां बैठ जाएंगे, 4 वहां आराम से बैठ जाएंगे। और यदि 10 भी हो तो 2 को गोद में बिठा लेंगे। परंतु यदि 3 लोग ट्रेन में एक साथ चढ़े हैं, केवल 3 का ही ग्रुप है, तो तीनों सीट के ऊपर इतना फैल कर बैठेंगे चौथे की जगह नहीं छोड़ेंगे। और चौथा व्यक्ति यदि आ भी जाए और कहे भाई साहब थोड़े अंदर बैठे, तो केवल ऐसे ऐसे हिलेंगे, अंदर नहीं बैठेंगे। क्यों भाई, क्या हुआ? वहां पर तो 5 लोग एक सीट पर बैठ गए और यहां पर 3 ही बैठे, चौथे को एंट्री नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो 5 जो थे अपने थे, अपने ग्रुप वाले थे, और यहां पर जो बेचारा कह रहा है कि थोड़ी जगह दीजिए, वो पराया है। वास्तव में ये मल है आत्मा का। जो अपने हैं उसके प्रति राग होता है, प्रेम होता है, और जो पराये हैं उसके प्रति अमल आत्मनाम। आत्मा का मल क्या है? राग और द्वेष। जो अपने हैं उसके प्रति प्रेम और जो पराये हैं उसके प्रति द्वेष, ईर्ष्या। वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में सब लोग अपने ही हैं, क्योंकि संसार में सब लोग आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का पुत्र है। तो हम परमात्मा के पुत्र होने के नाते हम सब लोग भाई हैं। परंतु इस ज्ञान के अभाव के कारण राग और द्वेष उत्पन्न होता है। तो देवी कुंती कहती हैं कि प्रभु आप इसलिए कृपा करते हो कि संसार के लोग परम गति को प्राप्त कर सके, शुद्ध हो सके, और आपकी लीला सुनकर, आपकी लीला सुनकर, आपके रहस्य को जानकर लोग परमहंस बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं और अमल आत्मनाम बन जाते हैं। और प्रभु जब इस प्रकार से बड़े बड़े लोग आपकी भक्ति करते हैं, परमहंस मुनि और अमल आत्मनाम बड़े बड़े लोग जब आपकी भक्ति करते हैं, तो फिर छोटे लोग भी उसे देखकर आपकी भक्ति में लग जाते हैं। देखिए बहुत सुंदर लिंक है, यदि समझना हो तो सबसे पहले प्रश्न उठा कि भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं कि समझ में ना आए। भगवान ऐसी लीला इसलिए करते हैं कि परम हंसों की मति उसमें लगे, और जब परम हंस की मति उसमें लगती है तो वे परम भक्त बन जाते हैं, और फिर जब बड़े लोग भक्त बन जाते हैं तो छोटे लोग बड़े लोग को देखकर भक्त बन जाते हैं। गीता में कहा गया है यदा चरति श्रेष्ठस्थ तद्देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। इस संसार में बड़े लोग जो कार्य करेंगे छोटे लोग उसका अनुकरण करेंगे। इस संसार में बड़े लोग का अनुकरण छोटे लोग करते हैं। अब देखिए इस संसार में कोई हरे कृष्ण हरे राम नहीं बोल रहा था, लेकिन संसार की दृष्टि में अक्षय कुमार बड़ा होगा। मान लीजिए एक फिल्म में हरे राम हरे कृष्ण का गाना गाया तो कई सारे लोग अपनी रिंगटोन में मोबाइल में हरे राम हरे कृष्ण करते हैं। बड़े लोग का अनुकरण छोटे लोग करते हैं, एक स्वभाव है। वास्तव में देखा जाए तो वे बड़े नहीं हैं, परंतु जो उसे बड़े मानते हैं तो वे उनका ही अनुकरण करेंगे। यदि सलमान खान मुंडन करा देगा तो संसार के कई लोगों ने मुंडन करा दी, नहीं तो कौन मुंडन कराता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि उन लोगों को कंठी और तिलक कर दिया जाए तो निश्चित ही संसार में कॉलेज और स्कूल में रहने वाले सब लोग तिलक और कंठी। तो वास्तव में बड़े लोग जो कार्य करते हैं छोटे लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। कुंती महारानी के इस श्लोक कहने का तीसरा अर्थ यह है कि प्रभु भक्ति योग विधानार्थ, आपकी भक्ति तो छोटे लोग नहीं कर पाते हैं, आपकी भक्ति बड़े बड़े लोग ही करते हैं। कौन कहते हैं? मुनि नाम, अमल आत्मा नाम और परम हंस। और आप देख लीजिए, इतिहास खोलकर देख लीजिए, कृष्ण की भक्ति करने वाले बड़े बड़े लोग होंगे और देवी देवताओं की भक्ति करने वाले आप देखिए, ब्रह्मा जी की भक्ति करने वाला हिरण्याकश्यपु था। और भक्ति, परंतु कैसी भक्ति, कहते 36,400 वर्ष तक उसने तपस्या की थी। और कैसी तपस्या, पादांग दुष्टा शीतावनी, अपने एक अंगुष्ठ के ऊपर खड़े रहकर ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि, अपने दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों आंख ऊपर करके, केवल अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर 36,400 वर्ष तक तपस्या की। वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यदि किसी का नाम है तपस्या में तो हिरण्याकश्यपु का है, ब्रह्मा जी का भक्त। परंतु कैसा असुर, सबको परेशान करने वाला। कंस दुर्गा देवी का भक्त था। अगले श्लोक में कहते हैं, यथा ऋषि केश खले न देव की, कंस खल था, कोई साधु नहीं था। और रावण शिव जी का भक्त था। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपने समस्त मस्तक काट कर दे दिए, तब जाकर शिव जी प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार भगवान के अलावा जो किसी की भक्ति करते हैं तो वे महान नहीं है, परंतु भगवान की भक्ति करने वाले महान महान लोग हैं। महान लोग ही भगवान की भक्ति करते हैं। इतिहास खोलकर देखिए, कृष्ण की भक्ति करने वाले महाराज अम्बरीश, अष्टम स्कंध जिसका वर्णन है, सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वांचा सिकुर्णान। महाराज अम्बरीश भगवान श्री विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। फिर देखिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले प्रहलाद महाराज साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान की भक्ति करने वाले को महाराज कहा जाता है। यद्यपि प्रहलाद 5 साल के थे, परंतु 5 साल के बालक को भी जब नाम लिया जाता है तो प्रहलाद महाराज कहा जाता है। कृष्ण की भक्ति करते, भगवान की भक्ति करने वाले हुए ध्रुव महाराज जो कृष्ण के भक्त, नारद मुनि कृष्ण के भक्त थे, वेद व्यास जी कृष्ण के भक्त थे, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले महान महान लोग हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही महानता है। ये सब तो बहुत दूर की बात है, हमारे कलयुग में ही कुछ वर्ष पहले कई लोग शंकराचार्य के फॉलोवर हैं, शंकराचार्य को मानते हैं। तो हमारे जो आदि शंकराचार्य हैं, वे भी कृष्ण के भक्त थे। वास्तव में वे शिव जी के अंश थे और उन्होंने बुद्धवाद का नष्ट किया, बुद्धवाद का सफाया किया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्थापित किया। एक समय की बात है, श्रीपाद शंकराचार्य एक नदी किनारे से जा रहे थे और नदी के तट पर एक बूढ़ा बैठे बैठे संस्कृत का व्याकरण सीख रहा था। 60-70 साल का बूढ़ा जो मरने पड़ा था वो व्याकरण सीख रहा था संस्कृत का, आगे चलकर श्लोक सीखेंगे। तब शंकराचार्य उस बूढ़े को देखकर कहने लगे कि यह व्याकरण व्याकरण पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अब जीवन काल आ जाएगा, तुरंत मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इस व्याकरण को छोड़ो और गोविंद को भजो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। हे मूढ़मति, ये व्याकरण सीखने का समय नहीं है, ये तो गोविंद को भजने का समय है। इसलिए कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते,
भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते,
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते,
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं, नहीं। भज गोविंदम
श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं, हे मूर्ख, आप लोग धन की तृष्णा को छोड़ो। रात दिन धन कमाने के लिए पड़े हो, धन की तृष्णा को छोड़ो। मन में अच्छे विचार लाओ और मन को शुद्ध करो। और यदि धन कमाना ही है, ऐसा नहीं है धन नहीं कमाना चाहिए, परंतु यदि धन कमाना ही है तो सत विचार से, सत कार्य से, सत कर्म से धन कमाओ। झूठ बोलकर और किसी का धोखा देकर और किसी का पैसा लेकर उठ करके धन मत कमाओ।
मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मन सिवि तृष्णा यल्लभ से निज कर्मोपादम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते
वास्तव में शंकराचार्य जी का जो भज गोविंदम है उन्होंने गाया नहीं है। वे जहाँ जहाँ जाते थे और कुछ लोग भक्ति से विमुख देखते थे तो उसे डांटते थे और उनके साथ जो शिष्य होते थे उन्होंने यह लिख लिया। तो एक व्यक्ति धन कमाने में बहुत मशगूल था तो उसे डांट कर कहा कि क्या धन कमाने में पड़े। और एक बार शंकराचार्य जा रहे थे तो एक लड़का किसी लड़की को देख रहा था, एक टक से एक नजर से देख रहा था और उस लड़की को फंसाने का प्रयास कर रहा था। शंकराचार्य देख लिए और बहुत निडर होता था, डरे बिना मुंह पर सीधा कह देते थे। उस लड़के को कहा कि क्या नारी के स्तन के सामने देख रहे हो, क्या है उसमें, हाड़ मांस और खून का लोथड़ा भरा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है और तुम उसे देख रहे हो।
नारी स्तन भरना भी देशम दृष्ट्वा मा गामोहावेशम नारी स्तन भरना भी देशम दृष्ट्वा मा गामोहावेशम।
असमें हम इस शरीर में बहुत आसक्त रहते हैं परंतु यह शरीर और कुछ नहीं, हाड़ मांस मल मूत्र मज्जा और बाल का एक समूह है। यदि इसे विश्लेषण करके देखा जाए तो व्यक्ति उसके सामने थूकेगा भी नहीं, परंतु बस इसी हाड़ मांस खून मज्जा को ब्रह्मा जी ने एक चमड़े में ढाल दिया है तो हम उसको देखते हैं और उसको स्पर्श करने में चूसने में लग जाते हैं। वास्तव में जो चमड़े को देखता है और चमड़े से प्रेम करता है वह मनुष्य नहीं, वह चमार मोची है।
ए तन मानसव सादि विकारम मनसि विचिन्तय वारम वारम
सब सब छोड़कर क्या करना चाहिए,
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
शंकराचार्य एक बार घूम रहे थे और कुछ लोग जिम कर रहे थे, अपनी बॉडी बढ़ा रहे थे, देख लिए उसे नहीं रह सके, डांट कर अरे मूर्ख अरे मूढ़ ये क्या शरीर बढ़ाने में पड़ा है, कितना भी बॉडी हो कितना भी शुष्क शरीर हो जीवन मृत्यु कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। आदि देवी आदि भौतिक क्लेश लगे हुए हैं, कब धरती कंप हो जाए, सुनामी आ जाए, गोलीबार हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए, कितनी भी बॉडी हो, कितना भी जिम में वजन ऊंचा उठकते हो, कोई काम में नहीं आए। कहते कमल दल जल जीवन तलम, जीवन कैसा है कमल के पत्ते के ऊपर जैसे बूंद स्थित है, वैसे हमारा जीवन है। एक हीरा एक हीरा एक हीरा
नील निदल गत जलमती, नील निदल गत जलमती तरलम, तत्व जीवित मतिया सच पालम।
जीवन बहुत कम है, इसलिए क्या करना चाहिए?
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते,
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने पुत्र की बहुत सेवा कर रहा था। कुछ साधु उसके पास गए और बताने लगे कि आप भक्ति करो, माला जपो, हरे कृष्ण जपो, गोविंद जपो। तब कहने लगा कि यदि मैं भक्ति करूंगा तो समाज वाले क्या कहेंगे, समाज का भय लग रहा है। शंकराचार्य वहां पर पहुंच गए और सुन लिए इस बात और जाकर इतना डांटे कि ये तुम्हारे समाज वाले कब तक साथ देंगे बताओ, ये समाज वाले संसार वाले जब तक धन तुम्हारे पास है तब तक साथ रहेंगे, जब तक धन लेकर घर पर आते हो तब तक पूछेंगे पिताजी कैसे हो, पतिदेव कैसे हो, और रिश्तेदार वाले पूछेंगे। जिस दिन धन नहीं रहा कोई कुछ नहीं पूछेगा, ये सत्य है। समाज वाले एक कवि तो बहुत सुंदर कहते हैं कि समाज कैसा है समझ लेना, आज ये समाज हाथी के अंबाड़ी के ऊपर बिठाए तो कल वही समाज गधे के ऊपर बिठाएगा, कोई भरोसा नहीं है। आज प्रशंसा करेगा तो कल फिर गाली देगा। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं ये समाज कैसा है, यदि आप रास्ते से चलते जा रहे हो, यदि आप अपनी आंखें ऊपर करके चल रहे हो तो समाज वाले कहेंगे देखो कितना अभिमान है, अपनी आंखें नीचे ही नहीं कर रहा है। समाज की इस बात को सुनकर यदि आप आंखें नीचे करके चलो तो वही समाज वाले कहेंगे कि लगता है कुछ गलत काम किया है, किसी का पैसा लेकर उठ गया है इसलिए आंखें नीचे करके चल रहा है। समाज की यह बात सुनकर आप आंख को सीधी रखकर चलो तो वही समाज वाले कहेंगे देखो कितनी गलत दृष्टि है, माँ बहन के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। और उसी समाज की बात सुनकर आप अपनी आंखों को फोड़ दो तो वही समाज वाले कहेंगे कि देखो किए हुए कर्म का फल भुगत रहा है। ये है समाज, समाज की ओर क्या करो,
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते,
भज भज मूढ़मते,
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते,
भज गोविंदम भज मूढ़मते।
यावपनो निवसति देहे तावत्रि क्षति लंगे
निवसति देवते
गतिवती वायो
आचार्य एक दिन रास्ते से जा रहे थे तो एक कपल को देख लिए। एक पति ही अपने पत्नी की बहुत सेवा कर रहा था और पत्नी के साथ साथ चल रहा था उनकी सेवा करना, उनके साथ रहना। तब शंकराचार्य ने उसे कहा कि इसकी सेवा मत करो, भगवान से प्रेम करो। तब वो कहने लगा, नहीं, ये मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे बिना रह नहीं सकती है। तब शंकराचार्य ने कहा कि ये पत्नी तुमसे नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करती है। शंकराचार्य ने बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित किया कि संसार के स्वजन पत्नी पुत्र इत्यादि व्यक्ति को तब तक प्रेम करते हैं जब तक आत्मा उसके देह में है। जैसे ही देह से आत्मा निकल जाती है, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली पत्नी कहती है कि बस इसे निकालो जल्दी, शमशान निकल जाओ, 5 मिनट भी रखना नहीं चाहता। वास्तव में प्रेम आत्मा से, इसलिए भगवान कृष्ण का गोविंद का भजन करना चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं,
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते,
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते,
भज गोविंदम भज
से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु भक्ति योग विधानार्थ भक्ति योग करके भक्ति योग के द्वारा परमहंस मुनि अमल आत्मा नाम आपको जानते हैं। तो आपको बड़े बड़े लोग जानते हैं और मैं तो एक साधारण स्त्री हूं, आपको कैसे जान सकती हूं? मेरे में कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि प्रभु मैं आपको जान सकूं, मेरे में ऐसी कोई योग्यता नहीं है। वास्तव में महारानी कुंती बहुत महान है सभी ओर से, पांडवों की माता है, राज माता है और पांडु राजा की पत्नी है, वसुदेव की बहन है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण की बुआ है, फिर भी अपने आप को तुच्छ कह रही है। वास्तव में ये स्त्री का स्वभाव है, स्त्री सदैव अपने आप को हीन समझती है, स्त्री में स्वाभाविक हीन समझने की भावना होती है, परंतु पुरुष 24 घंटा अहंकार में होता है, मैं कुछ हूं, पर आज तो पुरुष ही भगवान बनकर बैठ गए हैं कि हम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार ही प्रकट हो चुके हैं। और उस पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार के अवतार को बुखार भी आता है, दांत भी गिर जाते हैं और बाल भी पक जाते हैं। मूर्ख कहीं के शरीर का कुछ ठिकाना नहीं और अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार कहते हैं। वास्तव में भगवान सच्चिदानंदमय है। तो देवी कुंती अपनी हीनता प्रकट कर रही हैं कि मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, मैं आपको नहीं समझ सकती हूँ, इसलिए नमस्ते मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। अब अगले श्लोक में देवी कुंती भगवान से नमस्ते प्रणाम करती हैं। किस प्रकार?
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
प्रभु मैं आपको समझने में असमर्थ हूँ, इसलिए केवल आपको प्रणाम कर सकती हूँ। मैं आपके बारे में बहुत बहुत तो नहीं जानती हूँ, परंतु इतना जरूर जानती हूँ कि आप साक्षात गोलोक से आने वाले भगवान कृष्ण कृष्णाय। श्रीपाद जीव गोस्वामी इसका अर्थ करते हैं कि हे कृष्ण, मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि आप मेरे नेत्र को आनंद देने वाले। वास्तव में कृष्ण का अर्थ ही होता है आनंद देने वाला। जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं वो निश्चित आनंद में ही रहते हैं, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही आनंद है। कृष्ण शब्द कृष्ण भगवान के नाम में दो शब्द है और क्री का अर्थ होता है कृषि भू वाचक नच निवृत्ति वाचक तयोर एक परब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। क्री का अर्थ होता है कृषि, जैसे कृषि उद्योग होता है उत्पादन करना। क्री का अर्थ होता है उत्पादन होना और अण का अर्थ होता है आनंद, जिससे आनंद ही उत्पन्न होता रहता है, नित्य निरंतर जिसमें से आनंद निकलता रहता है उसे कृष्ण कहा जाता है। जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण के संसर्ग स्पर्श में आते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं, निश्चित वे आनंदित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं कि कृष्ण दास बिंदास। कृष्ण के जो दास होते हैं वे बिंदास होते हैं और माया दास उदास। माया के दास उदास ही देखने मिलेंगे। रास्ते में घूमते रहेंगे तो इतना टेंशन लेते घूमते हैं कि लगता है कि मनमोहन सिंह ने पूरे भारत का भार इसी को सौंप दिया है। उदास, केवल उदास ही उदास दिखाई देते हैं। जीवन में जीने के लिए क्या चाहिए? तीन टाइम खाने के लिए रोटी, थोड़ा सब्जी और पहनने के लिए दो जोड़ी कपड़े सबके पास हैं, लेकिन फिर भी इतना टेंशन लेते हैं, इतना टेंशन लेते हैं। स्वयं खा सके, उनके पुत्र खा सके, पुत्र के पुत्र खा और पहन सके, उतना धन है, परंतु इतना टेंशन लेते हैं, इतना टेंशन लेते हैं, लगता है पूरा मनमोहन सिंह के भाई ही हो गए। इतना टेंशन लेते हैं। वास्तव में भगवान के प्रति जो विश्वास रखता है वे कभी उदास और कभी चिंतित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का अर्थ ही होता है आनंदमय, सुखमय, सुख प्रदान करते हैं भगवान। तो कृष्णाय, मैं इतना तो जानती हूँ कि आप गोलोक से आए हुए साक्षात परब्रह्म कृष्ण हो, इसलिए कृष्णाय नमो नमः। हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इसके बाद महारानी कुंती कृष्ण के साथ अपना संबंध क्या है, संबंध के द्वारा कृष्ण को कहती हैं वासुदेवाय नमो नमः। हे वसुदेव नंदन, हे मेरे भाई के पुत्र, भगवान के असंख्य नाम है, हरि तेरे हजार नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। भगवान के असंख्य नाम है और भगवान के जितने भी नाम है उनके गुण और उनकी लीला से बने हैं। जैसे मधुसूदन, भगवान ने मधु नाम के दैत्य का वध किया तो उसका नाम हुआ मधुसूदन। जैसे गिरिधारी, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया तो उसका नाम हुआ गिरिधारी। भगवान का एक नाम है मुकुंद, मुकुंद का अर्थ है मुक्ति ददाती इति मुकुंद, मुक्ति देने वाला। तो भगवान के नाम उनके गुण उनके चरित्र उनकी लीला से होते हैं, परंतु हमारे समाज में भी कुछ लोग नाम रखते हैं। एक तो हमारे सामने ही बैठे हैं धनेश, लेकिन नौकरी ढूंढ रहे हैं दो साल से। धनेश नाम है धन का ईश, धन का देवता कुबेर, परंतु नौकरी के वांदे हैं। एक बार नारद मुनि मृत्यु लोक की यात्रा करने आए, यात्रा करने आए तो एक देवी कुछ गाय का गोबर एकत्रित कर रही थी ईंधन के लिए। नारद मुनि ने उस स्त्री को कहा कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। बहुत बढ़िया है, नारद मुनि ने कहा, लक्ष्मी छाना बीन छाने बीन रही है। नारद मुनि आगे बढ़े, आगे बढ़े तो किसी की ननामी जा रही थी, किसी की मृत्यु हो गई थी, बहुत लोग रो रहे थे, बहुत उसकी यात्रा में थे। तो पीछे एक व्यक्ति चल रहे थे, नारद मुनि ने बुलाया, ये कौन है, किसकी मृत्यु हो गई, कौन जा रहे हैं? नारद उस व्यक्ति ने नारद मुनि को कहा कि वो अमरनाथ थे, चल बसे। अमर जो कभी मरे नहीं उसके भी नाथ थे, बेचारे मर गए 60 साल में। तो हम भी हमारे नाम रखते हैं, परंतु हमारे गुण और हमारी लीला से नहीं होते हैं, तो रख देते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण के नाम उनके गुण और उनकी लीला से होते हैं। भगवान के असंख्य नाम है, परंतु जो नाम भगवान के भक्त से जुड़े हुए हैं, भगवान उस नाम को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए देवी कुंती अपना संबंध दिखाते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहती हैं, वासुदेवाय, हे वासुदेवाय, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में धन्य है वह वसुदेव जी जिसके पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण जन्म लिए। वसुदेव जी की धन्यता की क्या वर्णन किया जाए। एक पिता का कोई साधारण पुत्र भी होता है तो पुत्र को कभी भी अपनी पहचान देनी होती है तो अपने पिता के पिता से पहचान देता है कि मैं फलाने भाई का पुत्र हूं। लिखना भी होता है तो अपने नाम के पीछे पिता का नाम होता है। तो कल्पना कीजिए उस वसुदेव जी के सौभाग्य का कि जिस वसुदेव के नाम के आगे भगवान का नाम लगता है। और भगवान का नाम तो अद्भुत है, एक नाम में ही अपने पिता का नाम और भगवान का दोनों का नाम आ गया, वासुदेव। वासुदेव में कृष्ण का भी नाम है और वसुदेव का नाम भी है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि देवी कुंती भगवान से कह रही हैं कि प्रभु प्रभु आप गोलोक से आए हो और इस संसार में आकर सबसे ज्यादा आनंद सबसे ज्यादा सौभाग्य आपने अपने पिता वसुदेव जी को दिया, क्योंकि कहीं भी आप जाते तो इतना ही कहते थे मैं वसुदेव का पुत्र। तब कुंती कहती है कि नहीं नहीं, वसुदेव को तो आपको वसुदेव जी को तो आपने आनंद दिया ही, परंतु वसुदेव से भी ज्यादा आनंद आपने अपनी माँ देवकी को दिया, क्योंकि वसुदेव जी के तो आप पुत्र मात्र कहलाए परंतु देवकी के तो 9 महीने तक आप गर्भ में रहे, इसलिए वास्तविक आनंद तो आपने देवकी को दिया। इसलिए देवकी नंद नाय नमो नह नमो नमः, मैं देवकी के नंदन देवकी के पुत्र को प्रणाम करती हूँ। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जिसके गर्भ में आए हो उनके सौभाग्य की सीमा का क्या वर्णन किया जाए। भागवत में वर्णन है, भगवान जब देवकी के गर्भ में आए कई सालों से दुखी देवकी सुखमय हो गई, उनके मुख से तेज निकलने लगा, प्रकाश होने लगा। इस प्रकार से भगवान देवकी के नंदन। और देखिए बहुत आश्चर्य में बात तो यह है, भगवान से प्रार्थना करने में महारानी कुंती पहले शब्द में कहती हैं कि आप आदि पुरुष हो, आप सबके आदि हो, और यहां पर कह रहे हैं कि आप देवकी के पुत्र हो, आपके आदि तो देवकी है, इसमें से सत्य क्या है? तब आचार्य गण कहते हैं कि दोनों बात सत्य है, भगवान आदि पुरुष भी है और भगवान देवकी के पुत्र भी है, परंतु पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष बलवान होता है, इसलिए भगवान देवकी के पुत्र हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान को आदि पुरुष कहोगे और देवकी नंदन कहोगे तो देवकी नंदन कहने में भगवान को जो आनंद आएगा वो भगवान और ईश्वर कहने में इतना आनंद नहीं आएगा। तो आपने देवकी को आनंद दिया, तब देवी कुंती कहती है आपने देवकी को भी कहां आनंद दिया, वास्तविक आनंद तो आपने नंद बाबा को दिया, क्योंकि जन्म लेते ही आप अपनी माँ से दूर हो गए और दूर होकर गोकुल चले गए नंद बाबा के आंगन में, इसलिए प्रभु वास्तविक आनंद तो आपने नंद बाबा को दिया है। और नंद बाबा को भी कहां आपने आनंद दिया, नंद बाबा के घर पे तो आप केवल सोते थे, सुबह तो जगकर निकल जाते थे वन में वृंदावन में, इसलिए वास्तविक आनंद तो आपने गोप कुमारों को दिया है। और गोप कुमार को आनंद देने के कारण ही आपका नाम गोविंद हुआ, ऐसे गोविंद को बारंबार नमो नमः में प्रणाम कर रहे हैं। एक बार नमः नहीं कहा, नमो नमः, नमो नमः का अर्थ है बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु आपको बारंबार प्रणाम। वास्तव में भगवान का एक नाम गोविंद है और कृष्ण का वास्तविक नाम यदि पूछा जाए, कृष्ण के बाकी के जितने भी नाम है अपनी लीला से अपने गुणों से हुए हैं, परंतु कृष्ण का वास्तविक नाम है गोविंद और ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार करते हैं। गोविंद का अर्थ होता है गोपियों को आनंद देने वाले, गोविंद का अर्थ होता है गोप को आनंद देने वाले और गोविंद का अर्थ होता है गाय को आनंद देने वाले। कृष्ण ने यह तीनों को आनंद दिया, कितना आनंद दिया, अद्भुत अपरिसीम। इस आनंद की क्या चर्चा की जाए, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को जो आनंद दिया है वे तो तब पता चलता है जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं। रात दिन कृष्ण कृष्ण पुकारती है, कृष्ण की विरंग रोती रहती, ऐसा क्या आनंद भगवान ने गोपियों को दिया था। गोपियों के साथ भगवान लीला करते थे, कैसी लीला, बहुत बहुत लीलाएं हैं, परंतु एक लीला का वर्णन जरूर करूंगा। भगवान श्री कृष्ण छोटे से 5-6 साल के ब्रज वृंदावन में रह रहे थे और श्रीमती राधा रानी बरसाना में रहती हैं और भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते हैं। एक बार कृष्ण को पता चला कि बरसाना में बहुत सुंदर एक लड़की जिसका नाम राधा है वह रह रही है। भगवान ने कहा कि अब पूर्व में गाय में चरा कर हम दक्षिण में चराएंगे वहां जाकर। तो भगवान श्री कृष्ण सुबह उठकर बरसाना की ओर चले जाते और बरसा उस समय बरसाना की सभी गोपियां जिसमें प्रधान श्रीमती राधा रानी थी, बरसाना में जितना भी गाय का दूध होता था उस दूध की छाछ दही मक्खन और घी ये सब कुछ बेचने के लिए गोपियां बरसाना से मथुरा जाती थी। मथुरा सिटी था, शहर था, और बरसाना से मथुरा जाने के लिए बीच में बहुत रास्ते पड़ते थे, परंतु एक रास्ता ऐसा इतना पतला होता था, इतना छोटा होता था, इतनी पतली गली होती थी जिस गली से एक समय पर एक ही व्यक्ति पसार हो सकता है। आज भी वह गली है, दो व्यक्ति एक साथ जाना, आज भी कोई जाने का प्रयास करेंगे तो नहीं जा पाएंगे, जिसे सांकड़ी खोर कहा जाता है। तो भगवान ने बहुत कुछ परीक्षण किया और ढूंढा कि ये जगह हमारे लिए ठीक है। भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त गोपों को लेकर वहां पर खड़े रह जाते और राधा रानी की समस्त सखियां गोपियां दूध घी इत्यादि बेचने के लिए वहां से निकलती। तो जैसे ही भगवान वहां पर आते, क्षमा कीजिए, सभी गोपियां वहां पर आती मटकी लेकर मक्खन लेकर, तो कृष्ण बिल्कुल दोनों हाथ फैलाकर वहां खड़े रह जाते हैं, मैं नहीं जाने दूंगा। गोपियां प्रेम से पूछती हैं, भाई क्यों नहीं जाने देंगे। कृष्ण कहते हैं यदि आपको यहां से जाना है तो आपको टैक्स देना होगा, कर देना होगा। तो गोपियां बिल्कुल सीधे सीधा गाली देकर कहती थी, क्या बरसाना तेरे बाप का है कि हम तुम्हें टैक्स देंगे? भक्तों आप ऐसा मत सोचिए कि गोपियां कृष्ण को गाली दे रही हैं और कृष्ण बहुत दुखी हो रहे हैं। साक्ष्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में कृष्ण को यदि कोई गाली भी देते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में। वो स्वाद मुझे ब्रह्म स्तुति में नहीं आता है जो स्वाद ऐसी मीठी ब्रज की गाली। ब्रज की गाली सुनने में जितना आनंद आता है उतना जय जगदीश हरे में नहीं आता है। तो भगवान प्रसन्न होते थे, कहते हैं, अरे सारे क्या तेरे बाप का बरसाना है? भगवान कहते थे, हाँ ससुर बाप के समान ही होते हैं। भगवान कहते हैं, आपको यहाँ पर से जाना होगा तो टैक्स देना होगा। गोपियां कहती थी, नहीं देंगी। भगवान कहते हैं, देना होगा, नहीं देंगी, देना होगा, नहीं देंगी। तब भगवान एक इशारा करते थे, सभी बालक, सभी ग्वाल पीछे से, पहाड़ के पीछे से पत्थर फेंक फेंक कर सभी मटकी को फोड़ डालते थे। तहस नहस गोपियां दूध घी मक्खन से बिगड़ जाते थे। इस प्रकार से भगवान प्रतिदिन लीला करते थे। क्या प्रश्न उठता है, क्या गोपियों को जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था? परंतु गोपियों को भी इस लीला को देखने में, कृष्ण के साथ बातचीत करने में, उसका दर्शन करने में बहुत आनंद आता। सारी गोपियां प्रतिदिन उस रास्ते से जाती थी। अब कृष्ण के इस उत्पात को देखकर सब गोपियां बहुत चिंतित हो गई कि प्रतिदिन हमारी मटकी फोड़ रहा है, कुछ करना होगा। ब्रज की सभी गोपियां एकत्रित हुई और एकत्रित होकर कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण खबरदार, यदि अब की बार तुमने हमारी मटकी फोड़ी तो हम यशोदा मैया को जाकर कह देंगे और तुम्हें उखल में उखल से बंधवाई दूंगी। गोपियां कृष्ण से कहती हैं, तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। भगवान श्री कृष्ण जब मटकी फोड़ते थे तब समस्त गोपियां कृष्ण को कहती थी कि एक थप्पड़ मार देगी यदि हमारी मटकी को फोड़ी थी। तो हे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी।
तो हे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी।
मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी,
मत फोड़ दही की मटकी,
मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी,
मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी।
तोहे काहू दिन, तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी।
तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी।
मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की,
ग्वालिन बरसाने की,
मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की,
ग्वालिन बरसाने।
देखो कृष्णा, हम गोकुल के रहने वाले नहीं हैं, हम बरसाने के हैं और हम तो थप्पड़ लगा देती हैं, हम ऐसे वैसे नहीं हैं।
मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की,
ग्वालिन बरसाने की,
तेरी घोष में नहीं आने की,
तेरी घोष में नहीं आने की,
तेरी घोष में नहीं आने की,
तेरी घोष में नहीं आने।
ओ तेरो रसता, तेरो रसता, तेरो रसता बंद कराए मत फोड़ दही की मटकी।
तेरो रसता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी
मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी
मत फोड़ दही की मटकी मत फोड़ दही की मटकी
तोहे काहु दिन हाथ लगाए
काहो दिन हाथ लगाए दोगी मत फोड़ दही के मटकी
मातु यशोदा से कहलाई
मातु यशोदा से कहलाई
घर चल तेरी करेगी पिटाई
घर चल तेरी करेगी पिटाई
मातु यशोदा से कहलाई
तो यशोदा से कहवाई
घर चल तेरी करेगी पिटाई
घर चल तेरी करेगी पिटाई
तोहे ऊखल तोहे ऊखल तोहे ऊखल ते बंधवाई मत फोड़ दही की मटकी
तोहे ऊखल ते
तोहे ऊखल से बनवाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी
बनवाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी
भयो अनोखो तू उत्पाती
भयो अनोखो तू उत्पाती
भयो शर्म तो कू नहीं आती
नैक शर्म तो कू नहीं आती
नैक शर्म तो कू नहीं आती
नैक शर्म तो कू नहीं आती
तेरी कंस पे तेरी कंस पे तेरी कंस पे खबर कराए दूंगी मत फोड़ दही
गोपियां कहती थी कि हम तुम्हें हाथ लगा देगी अर्थात थप्पड़ मार देगी या यशोदा को कह देगी या कंस को कह देगी कि आप हमें परेशान कर रहे हो तो कृष्ण इतना ही कहते थे क्या मैं कंस से डरता हूं कंस क्या खसम लगे तेरो कंस क्या तुम्हारा पति लग रहा है कि कंस 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 कह रही है करो कंस निर्वंश मिटत नाम निशानी रे देखती रहना एक ना एक दिन इसी हाथ से कंस का वध कर दूंगा कंस की दुआएं दे रही है। इस प्रकार से बहुत बड़ा हल्ला होता था भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों को आनंद देते थे और इसी के साथ साथ गोपियों के साथ रासलीला किए और भी कई सारी लीलाएं की तो गोपियों को आनंद देते थे इसलिए कृष्ण का नाम हुआ गोविंद इसी के साथ साथ कृष्ण गोप उनके सखाओं को भी आनंद देते थे एक बार कृष्ण के सखाओं ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण हमें बहुत भूख लगी है अब कृष्ण तो कहने लगे क्या चाहिए क्या खाना है कहा कि दक्षिण से बहुत सुंदर हवा आ रही है और वहां से ताड़ के फल की सुगंध आ रही है हमें ताड़ के फल खाने हैं कृष्ण ने कहा ठीक है चलो परंतु गोपों ने कहा कि वहां पर बहुत बड़ा असुर रहता है धेनु का असुर बहुत बड़ा गधा रहता है धेनु का असुर एक बहुत बड़ा गधा था और ताड़ के वन में अपना डेरा डालकर बैठा था और न तो वो ताड़ के फल खाता था और न तो दूसरों किसी को देता था कोई यदि वहां पर जाए तो उसको मार डालता था एक भक्त बहुत सुंदर कहते हैं, वास्तव में जिसके पास बहुत सारी वस्तु होती है, जिसके पास बहुत सारा धन होता है, न तो वो अपने लिए यूज करता है और न तो दूसरों को दान देता है, तो वो धेनु का असुर जैसा गधा है। शास्त्र में लिखा गया है धन की तीन गति होनी चाहिए। धन की तीन गति होती है। सबसे पहले धन को दान देना चाहिए। यदि यह न कर सको तो अपने लिए इतना लुटाओ, उस धन को इतना वापरो कि आप सुखी हो जाओ। यदि ये नहीं कर पाओगे तो फिर या तो आप धन को छोड़कर चलो चले जाओगे या धन आपको छोड़कर चले जाएगा। तो इस प्रकार कृष्ण के सखाओं ने कहा कि फल खाने हैं। सब लोग गए ताल वन में। वहां जाकर कृष्ण ने बलदेव जी को कहा कि यहां पर आप ही कुछ कीजिए। बलदेव जी ताल के फल को खाने के लिए पेड़ को हिलाए, ताल का फल गिरा। उतने में धेनुकासुर को पता चला कि हमारे वन में कोई आया है। धेनुकासुर दौड़ते दौड़ते आया और गधे फेमस है लात मारने में, और गधे जब लात मारते हैं तो पीछे से लात मारते हैं। घोड़े आगे से मारते हैं, गधे पीछे से मारते हैं। धेनुकासुर दूर से दौड़ता हुआ आया, कृष्ण और बलराम के वक्ष स्थल के ऊपर लात मारकर चला गया। परंतु कृष्ण और बलराम जगह पर खड़े रहे, बहुत क्रोधित हुआ। जब दूसरी बार वो दौड़ता दौड़ता आया, लात मारने गया, उतने में बलदेव जी ने पकड़ा दोनों लात को, एक हाथ में पकड़ा और घुमा घुमा कर उसे फेंक दिया। उसे घुमाने में ही उसका प्राण निकल गया। जब पता चला कि हमारे सरकार धेनुकासुर मर गए, तब उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका पूरा परिवार, कई सारे गधे आए। और जब सब गधे आए तो कृष्ण और बलराम सब गधों को पकड़ पकड़ कर फेंकने लगे। इस प्रकार से बहुत सुंदर कौतुक और आनंद होता था। तो भगवान सखाओ को आनंद दिए। सखाओ के साथ माखन चोरी करते थे, मक्खन खिलाते थे, इसलिए भगवान का नाम हुआ गोविंद। और गोविंद नाम का एक तात्पर्य यह भी है, भगवान गाय को भी आनंद देते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण गाय से बहुत प्रेम करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का गाय के प्रति प्रेम तब पता चलता है जब पहली बार जीवन में प्रथम बार कृष्ण गाय को चराने के लिए जा रहे थे। कृष्ण जीवन में पहली बार जब गाय को चराने के लिए जा रहे थे तब नंगे पांव चलने लगे। तब नंद और यशोदा ने कहा कि बेटा कृष्ण जरा चप्पल खड़ो पहनकर जाओ, क्योंकि जंगल में बहुत कंकर पत्थर कांटे होते हैं, आपको लग जाएंगे। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं खड़ो नहीं पहनूंगा। जब यशोदा मैया ने बहुत बहुत कहा कि लाला चप्पल पहन ले, बहुत विनती किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को कहा, यशोदा हे मैया, यदि मुझे चप्पल पहनाने हैं तो पहले आपको 36 लाख चप्पल बनाने होंगे, क्योंकि हमारे पास 9 लाख गैया हैं और एक गाय के 4 पैर, 36 लाख चप्पल पहनाओ, सभी गाय के चरणों में चप्पल डालो, तब मैं चप्पल पहनूंगा। माते, संसार के लोग मुझे गोपाल कहते हैं, गोविंद कहते हैं, मैं गायों का पालन करने वाला हूँ, गायों का रक्षण करने वाला हूँ, गायों का भक्षण करने वाला नहीं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से गाय से प्रेम करते थे। गैया आगे आगे चलती थी, भगवान पीछे पीछे चलते थे। गोपी अपनी प्रार्थना में, गोपी गीत में कहती हैं कि गैया आगे आगे चलती थी, घास चर चर के उस घास के को धार धार करते हुए चलती थी, फिर भी उस कठोर घास के ऊपर कृष्ण चरण रखते थे, गाय की रक्षा करते थे। इसलिए कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। देवी कुंती कहती है कि ऐसे गोविंद को मैं बार बार प्रणाम करती हूं। इस प्रकार से महारानी कुंती प्रार्थना करती ही जा रही है। यह नमन प्रणाम करते करते महारानी कुंती की दृष्टि कृष्ण के ऊपर गई, और कृष्ण के ऊपर दृष्टि जाते ही देवी कुंती प्रणाम करती हुई कहती है, नमो पंकज नाभाय, हे कृष्ण मैं आपकी नाभि कमल को, आपकी नाभि को प्रणाम करती हूँ। अब प्रश्न होता है, आज तक इस संसार में किसी भी व्यक्ति ने कृष्ण को नाभि में प्रणाम नहीं किया, कृष्ण की नाभि को प्रणाम नहीं किया, देवी कुंती ने कृष्ण की नाभि को प्रणाम क्यों किया? जितने भी लोग कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने की विधि है चरण से प्रणाम किया जाता है, परंतु देवी कुंती ने नाभि से प्रणाम क्यों किया? कुंती ने सोचा कि यदि मैं कृष्ण के चरणों को पकड़ लूंगी, कृष्ण के चरणों को प्रणाम करूंगी तो यह लीला के लिए ठीक नहीं है। हम जो लीला कर रहे हैं लीला की दृष्टि से यह बात ठीक नहीं है, इसलिए देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में प्रणाम करती है और ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है। यह वही नाभि है जिस नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। निश्चित भगवान श्री कृष्ण की नाभि से ही वह कमल प्रकट हुआ जिस कमल में ब्रह्मा जी रहते हैं और उस कमल की डंडी में ही यह 14 भुवन रहते हैं। वास्तव में जब हम भगवान की नाभि देखते हैं, कृष्ण का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, तो सबको यह बात याद करनी चाहिए कि ये वह नाभि है जिस नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ये वो बालक है जिसके रोम रोम पर ब्रह्मांड प्रकटे। तो महारानी कुंती उस नाभि को प्रणाम करती है। नमो पंकज मालिने, नाभि के बाद भगवान श्री कृष्ण के गले में नजर गई और गले में भगवान श्री कृष्ण के गले में एक हार था और वह हार किसका था? पंकज कमल का हार था। इसलिए देवी कुंती कहती है कि कमल के हार पहनने वाले बाले कृष्ण को, पंकज माला धारण करने वाले कृष्ण को मैं नमन करती हूँ। नमो पंकज मालिने। इतना ही नहीं, कमल के पंखड़ी के समान नेत्र वाले कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। नमो पंकज नेत्राय। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कमल के समान है और भगवान श्री कृष्ण में हजारों कमल है, कर कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, कर्ण कमल, मुख कमल, इस प्रकार से अनेकों कमल की उपमा भगवान कृष्ण के साथ दी जाती है। तो नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय। हे प्रभु, हे कृष्ण, आपके नेत्र कमल के समान है। इस प्रकार से देवी कुंती भगवान को प्रार्थना कर रही है, फिर भी महारानी कुंती के ऊपर वश नहीं हुआ, अपने आप को रोक नहीं सकी, इसलिए अंत में कह ही दिया कि नमस्ते पंकजांग्रे, हे कृष्ण, मैं आपके चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। कृष्ण के चरण कमल को वंदन कर रही है, प्रणाम कर रही है, प्रार्थना कर रही है। अब प्रणाम करते करते अब महारानी कुंती के हृदय में, महारानी कुंती के मन में कृष्ण की कृपा याद आ रही है। ओ, ये कृष्ण की कितनी मुझ पर कृपा है, ये कृष्ण ने मुझ पर कितनी कृपा की है। कृपा की भी हद होती है। व्यक्ति एक बार किसी के ऊपर कृपा करता है, दो बार करता है, तीन बार, चार, पांच, दस, लेकिन सैकड़ों बार कृष्ण ने हम पर कृपा की। तो कृष्ण ने मुझ पर कितनी कृपा की है, इसका वर्णन करते हुए महारानी कुंती कहते हैं, यथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुदाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन विपद्गणा। देवी कुंती अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण के माता देवकी के साथ कर रही है। देवी कुंती कहती हैं कि एक ओर मैं हूं आपकी बुआ हूं और एक ओर आपकी सगी माँ, हम दोनों के बीच में यदि देखा जाए तो आपने अपनी सगी माँ से भी ज्यादा कृपा मुझ पर की है कृष्ण। क्यों? क्योंकि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, उस खल कंस के द्वारा आपकी माँ को कितना सताया गया है। वास्तव में कंस के द्वारा देवकी को बहुत सताया गया था। विवाह के दिन ही कंस ने देवकी के देवकी को मारने के लिए उनके बाल पकड़ लिए और फिर वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया और देवकी के एक एक करके छह पुत्रों को उनके आंख के सामने देखते देखते पत्थर की शिला के साथ पटक पटक कर मार डाला। किसी माँ के पुत्र को छोटी छोटी सी खरोज भी आती है तो वो माँ को हृदय में बहुत दुख होता है, परंतु देवकी के छह छह पुत्रों का वध उनकी आंखों के सामने किया गया। कल्पना करो भक्तों, वह देवकी कितनी दुखी होगी और उसमें सातवां गर्भ कहां चला गया कोई निश्चित नहीं रहा। जिसके साथ साथ गर्भ चले गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उस माँ के ऊपर कितना दुख बीता हो ये तो एक माँ ही जान सकती है। नौ नौ महीने तक जिस बालक को अपने गर्भ में धारण करती है, पालती है, पोसती है और जब वो बालक की मृत्यु हो जाती है तब उस माँ को बहुत कष्ट होता है। पिता तो एक बार सह लेते हैं परंतु माँ बहुत दुखी होती है। कृष्ण, आपके छह छह भाई मर गए, आपकी माँ के छह छह पुत्र मर गए, परंतु फिर भी आपने उसकी रक्षा नहीं की, परंतु मेरे जीवन में बार बार कठिनाई आई, दुख आए, आपने दुख रहने नहीं दिए। दुख आते थे परंतु कुछ क्षण तक आकर चले जाते। कृष्ण, आपने अपने भाई के ऊपर इतनी कृपा नहीं की, आपने अपने भाई को नहीं बचाया परंतु मेरे पुत्र को बार बार आपने बचाया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कब कब और कैसे कैसे बचाया है ये सारी बातें देवी कुंती के मन में याद आ रही है। जैसे फिल्म की रील घूम रही है वैसे कुंती के मन में समस्त लीला कृष्ण की उभर रही है। इसलिए कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि कृष्ण, आपके हम पर कितने उपकार हैं, कोटिन मोह कई जात प्रभु के एक एक उपकार, करोड़ों करोड़ उपकार आपके हम पर। सबसे पहले मेरा सबसे बलवान बेटा उस दुर्योधन के खिलाए हुए विष से मर चुका था, परंतु कृष्ण आपकी कृपा से मेरा पुत्र भीम बच गया। विशान महाग्नि पुरुषार्थ दर्शना, आपने मेरे पुत्रों की विष से रक्षा की। किस प्रकार? पांडव जब नाने छोटे थे, गुजराती बहुत आ रहा है, पांडव जब छोटे थे तब दुर्योधन ने एक बार सोचा कि इस पांडवों में सबसे बलवान भीम है, इसलिए यदि हम भीम को मार देंगे तो फिर उसकी सेना को मारना बहुत आसान होगा। बचपन की बात है। तो दुर्योधन ने मीटिंग की कि यह भीम खाने में बहुत होशियार है, भीम भोजन बहुत करते थे, पांच जन का अकेले खा जाते थे, परंतु भक्तों केवल भोजन ही नहीं करते थे, भजन भी उतना करते थे, भोजन के साथ साथ काम भी उतना करते थे। वनवास के समय पर जब पांडव चल चल कर थक जाते थे तो पांचों चारों भाई और अपनी माँ को कंधे में बिठाकर भीम अकेले चलते थे, जितना खाते थे उतना काम भी करते थे, परंतु हमारे जीवन में खाते बहुत हैं और काम बहुत कम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी भी पसंद नहीं करते हैं। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं, मान लीजिए आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, शोरूम में जाएंगे तो अब तो पेट्रोल के भाव इतना बढ़ गए हैं, सबसे पहले व्यक्ति प्रश्न यह पूछेगा कि सबसे ज्यादा एवरेज देने वाली गाड़ी कौन सी है, वही लेगा जो कम से कम पेट्रोल खाए और ज्यादा से ज्यादा माइलेज चले, उसे हम स्वीकार करते हैं, लेते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्तों, यहाँ पर जो लोग कम से कम भोजन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा भजन करते हैं, ऐसे ही लोगों को भगवान अपने धाम में उठाते हैं, अपने धाम में ले रहे हैं। तो भोजन कम भजन ज्यादा, यदि भोजन ज्यादा भी करते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु भजन ज्यादा होना चाहिए। भीम खाने में बहुत होशियार थे और दुर्योधन ने सोचा कि काम करते हैं, पिकनिक के बहाने इसे बाहर लेकर जाते हैं, कहा कि भीम भैया पिकनिक में जाना है, कहाँ नेशनल पार्क। अब वो लोगों का भी कुछ पार्क होगा। तो भीम ने कहा ठीक है चलो जाते हैं। सब लोग पिकनिक में गए और वहां पर कालकूट नाम का विष लड्डू में सभी लड्डू में डालकर लेकर आए और भीम को दिया गया। भीम भैया ये आपके लिए स्पेशल प्रसाद बनाया है। अब भीम तो इतना चाहते थे, वे तो एक एक करके 50-60 किलो लड्डू खा गए और जैसे ही खाना समाप्त हुआ भीम मूर्छित होकर गिर गए। अब कालकूट नाम का विष अपना प्रभाव थोड़ी ना छोड़ सकता है। जिस विष के सुगंध मात्र से व्यक्ति मर सकता है वो विष दुर्योधन ने भीम को खिला दिया और खिलाकर जब वे मूर्छित हो गए तब भीम के दोनों हाथ और पांव पकड़कर गंगा नदी में फेंक दिया और हस्तिनापुर में आकर कहने लगे कि हम लोग गंगा में स्नान कर रहे थे और भीम उसमें डूब गए। सब लोग शोक मग्न थे और यहां पर भीम गंगा में डूबते डूबते अंत में पाताल में चला गया और पाताल में नाग लोक में चला गया। जब नाग लोक में गया तो कई सारे नाग आए और उस भीम के शरीर को डसने लगे। परंतु शास्त्र का एक सिद्धांत है विशेष्य विषम औषधम, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे विषधारी विष को काट देता है। तो पहले से ही भीम के शरीर में विष था। जैसे ही यह विषधारी सर्प उसे डसने लगे तो भीम के शरीर में जितना विष था वो बाहर निकलने लगा और धीरे धीरे मूर्छित अवस्था में होश में आने लगे। सभी सर्प लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इसे हम जितना डस रहे हैं उतना ही होश में आ रहे हैं। दौड़कर अपने सरदार के पास गए, वासुकी नाग के पास गए और वासुकी नाग के पास जाकर कहे कि एक ऐसा आश्चर्यमय व्यक्ति आया है, हम उसे जितना डस रहे हैं उतना वह होश में आ रहा है। तब वासुकी सर्पराज वासुकी ने कहा एक काम करो उसे बांधकर यहां पर लेकर आओ मुझे उसे देखना है। तो सर्प आए और भीम को बांध दिए और सर्पराज वासुकी के पास लेकर गए। वासुकी के पास लेकर गए तो वासुकी नाग के साथ एक व्यक्ति रहते थे जो भीम के नाना के नाना थे जिसका नाम था शूरसेन। तो वे देख लिए कि अरे भांजे, अरे पुत्र, आप यहां पर कैसे आ गए, तू यहां पर कैसे आ गया। तो भीम ने अपने नाना जी को कहा कि क्या कहूं नाना जी, दुर्योधन ने विष खिलाकर मूर्छित कर दिया और इस गंगा में फेंक दिया। तब शूरसेन ने वासुकी को कहा कि ये अपना आदमी है आप इसे छोड़ दो और भीम को कहा कि भीम आप डरो मत, यहां पर 8 अमृत के कुंड है, जितना पीना है उतना पियो और स्नान करना है उतना स्नान करो। भीम गए पहले अमृत कुंड में गए, अमृत को पिया और उसमें स्नान किया। स्नान करके जैसे ही उस कुंड से बाहर आए तो 1000 हाथी का बल प्राप्त हो, दूसरे कुंड से 2000 हाथी का बल, वैसे 8 कुंड से 8000 हाथी का बल प्राप्त हुआ और जन्म से 2000 हाथी का तो बल था ही। तो इस प्रकार से भीम को शक्तिशाली किया गया और उनके नाना ने बहुत सुंदर आदर सत्कार करके भीम को बाहर निकालकर गंगा नदी के तट पर छोड़ दिया। देवी कुंती याद कर रही है कि प्रभु मेरा पुत्र भीम मर चुका था परंतु आपकी कृपा से वह मरा हुआ भीम गंगा में मरा हुआ गया और बाहर निकला तो 10,000 हाथी का बल लेकर निकला। कृष्ण आपकी कृपा से, ये सब आपकी कृपा से हुआ। विशान तत्पश्चात गिना रही है महाअग्नि, प्रभु महाअग्नि के द्वारा हमें मारने का प्रयास किया गया। जब कौरव और पांडव एक साथ रह रहे थे, राजा पांडव की मृत्यु हो गई, तब दुर्योधन ने कहा कि पिताजी यहां पर हम 100 भाई हैं और ये 5 भाई हैं, 105 भाई एक घर में रहने में बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए काम करते हैं पांडवों के लिए एक नया महल बना देते हैं। धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में कह दिया ठीक है बनाओ। तब दुर्योधन ने पांडवों को रहने के लिए एक ऐसे महल का निर्माण किया, वो महल मोम से बना था, जैसे मीनबत्ती होती है वो मोम से वो महल बना था। इस प्रकार से यह महल बनाया गया कि एक दिया सली मारने पर 5 मिनट में सारा महल जलकर भस्म हो जाए। परंतु भगवान तो सभी के हृदय में है। दुर्योधन को क्या सूझी, वह महल बनाने के लिए आर्किटेक्ट इंजीनियर को विदुर जी को रखा। कहा विदुर जी, चाचा जी इसकी डिजाइन आप कीजिएगा और आपके नेतृत्व में ऐसा महल बनाओ। विदुर जी जान गए, भगवान ने विदुर जी के हृदय में प्रेरणा की, इसलिए विदुर जी ने दुर्योधन के कहने पर लाक्षागृह का निर्माण तो किया, परंतु उसी के साथ साथ उस महल से एक सुरंग बनाई, एक ऐसा रास्ता बनाया जो महल से बिल्कुल जाकर जंगल से बाहर निकलता है, भगवान की कृपा। और महाभारत में वर्णन है, जिस दिन धृतराष्ट्र इत्यादि पांडवों को उस महल में भेज रहे थे, वास्तु पूजन था, उस दिन उस सभा में विदाई समारोह था, सब लोग कुछ कुछ बोले, उस वक्त महाभारत में वर्णन है विदुर जी म्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को कुछ कहे। अब म्लेच्छ भाषा का अर्थ होता है म्लेच्छ माने अंग्रेज, और यदि इसका यह अर्थ किया जाए तो विदुर जी ने इंग्लिश में युधिष्ठिर को कुछ कहा, और उस समय इंग्लिश केवल युधिष्ठिर और विदुर जी ही जानते थे। क्या कहा इंग्लिश में, बिल्कुल कॉड वर्ड में कह दिया कि चूहा जब अपना घर बनाता है तो उस अपने घर के 2-3 रास्ते बनाता है, इतना कह के विदाई दे दिया। युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि उस महल में कुछ गड़बड़ होने वाली है, परंतु हमारे चाचा विदुर जी ने कुछ रास्ता बनाया है। युधिष्ठिर इत्यादि पांडव, द्रौपदी, क्षमा कीजिए द्रौपदी नहीं थी, कुंती देवी उस महल में रहने के लिए गए। पांडव जानते थे कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, इसलिए प्रतिदिन एक भाई जगता था। चार भाई सोते थे, एक जगता था, टर्न था, आज भीम को जगना है, कल अर्जुन को जगना है, बाकी को चार को सोना है, तो जग जग कर दिन बिताते थे। एक बार भीम ने सबको कहा कि देखो क्या रोज रोज जगना, एक काम करते हैं, हम स्वयं इस महल में आग लगा देते हैं और यहां से भाग जाते हैं। ये प्रस्ताव अच्छा लगा, और एक दिन भीम ने स्वयं अपने हाथ से उस महल में आग लगाई। उसने सोचा कि ये लोग आग लगाए और हम लोग मर जाए, उससे अच्छा है हम ही आग लगा कर निकल जाते हैं। तो पूरे महल में आग लगाई, उस सुरंग के द्वार से, उस रास्ते से ये पांचों पांडव और कुंती निकल गई। परंतु भगवान का योग था कि उसी दिन उस महल के प्रांगण में एक भीलनी अपने 5 पुत्र को लेकर आई थी। बहुत ठंडी की ऋतु थी, इसलिए उस महल के प्रांगण में आकर सो रही थी, और बेचारे पांडवों को पता नहीं था, इसलिए वे तो आग लगाकर चले गए। पांडव तो बेचारे बच गए, परंतु ये भीलनी और उनके 5 पुत्र उस आग में मर गए। दूसरे दिन खबर मिली कि उस लाक्षागृह में आग लग गई, आग लग गई। दुर्योधन ने सोचा कि किसने लगाई होगी, परंतु सोचा किसी ने भी लगाई है, एक ना एक दिन तो लगानी ही थी। आकर देखा तो एक स्त्री और उनके 5 पुत्र जले हुए पड़े थे। तो सब लोग ने सोचा कि कुंती और उसके 5 पुत्र यहां पर मर चुके हैं। बाहर से तो सब लोग रो रहे थे, परंतु अंदर से दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो रहा था, यही होना था। परंतु भगवान कृष्ण की कृपा से विशान महाग ने इस महाअग्नि से पांडव बच चुके थे। फिर पुरुषार्थ दर्शनार्थ देवी कुंती कहती हैं कि आपने भयंकर भयंकर असुर से मेरे पुत्र की रक्षा की। जब पांडव वहां से निकले तो वहां से निकलकर पांडव एक चक्र नाम के गांव में आए, जो बंगाल में है, मायापुर के बगल में, जिस गांव में नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था। परसों के दिन नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है, उसी नित्यानंद प्रभु का जहां पर जन्मदिन हुआ था उसी जगह पर पांडव गए एक चक्र नाम के गांव में, और वहां पर अपने क्षत्रिय वेश को छिपा दिए और ब्राह्मण के वेश में रहने लगे। परंतु उस एक चक्र गांव में एक दुर्घटना बनी थी। एक दिन की बात, ये पांडव जिस घर में रह रहे थे उस घर में सुबह से मां और बच्चे और पिताजी सब लोग रोने लगे। देवी कुंती ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तब सारा वृतांत बताया कि इस गांव के चौराहे में एक असुर रहता है जिसका नाम है ब्रिक, और वे असुर पहले बहुत इस गांव के लोगों को मारकर खा जाता था। फिर गांव के लोगों ने मीटिंग की कि आप एक काम करो, आप सबको मत खाओ, हम साल में एक बार आपको बहुत भोजन भेजेंगे और भोजन के साथ इस गांव में जितने भी घर हैं उस घर से एक व्यक्ति को भेजेंगे, आप भोजन भी खा लेना और उस व्यक्ति को भी खा लेना। तो गांव वालों ने और उस असुर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब धीरे धीरे वह टन आते आते कुंती देवी जिस घर पे, पांडव जिस घर पर रह रहे थे, उस घर में रहने वाले का टन आया। तब पिताजी कह रहे थे कि मैं जाऊंगा भोजन लेकर, और पुत्र कहता था मैं जाऊंगा, और उसमें मां रो रही थी, चाहे पिता जाए या पुत्र जाए मेरे तो एक ना एक तो जाने ही वाले हैं। तब कुंती देवी ने कहा कि पिता और पुत्र दो में से कोई नहीं जाएगा, मेरा पुत्र भीम जाएगा। भीम ने कहा ओके। पूरे गांव में जितना भी भोजन जिसके घर पर बना था सब बैलगाड़ियों में लाद दिया, पूरे गांव का भोजन एकत्रित किया और भीम उस भोजन को लेकर चलने लगे। भीम रास्ते में ही वो भोजन करते करते जा रहे थे, जब तक उस असुर के पास पहुंचे तब तक तो सारा भोजन समाप्त कर चुके थे, और वो असुर राह देख रहा था, कई देर से राह देख रहा हूं कोई आया नहीं है, कहां है मेरा भोजन, कहां है? तब भीम गए उसकी साथ युद्ध किए, और उस पुरुषार्थ दर्शनाथ कुंती देवी कहती हैं कि उस असुर का वध किया भीम ने। भीम में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, परंतु कृष्ण आपकी कृपा से उस अदर्शन जिसका दर्शन कभी नहीं करना चाहिए ऐसे ब्रिक नाम के असुर का भीम ने वध किया। तत्पश्चात कुंती देवी कहती हैं कि असत सभाया आपने असत सभा से हमारी और हमारे कुल वधू द्रौपदी की रक्षा की। जब ब्राह्मण के वेश में एक चक्र नाम के गांव में रह रहे थे पांडवगण, और जब इस असुर का वध भीम ने कर दिया तो सब जगह पर यह चर्चा चल गई कि पांच लोग एक स्त्री के साथ आए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार किया। जब बहुत प्रशंसा होने लगी तब पांडव उस गांव को छोड़ दिए, और उस गांव को छोड़कर फिर वहां से पंजाब जाने के लिए निकले, पंजाब की ओर गए, और पंजाब में द्रुपद राजा अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह करने के लिए स्वयंवर रचे थे, और उस स्वयंवर में यह शर्त थी कि छत के ऊपर एक मछली घूम रही है, उस मछली को उसके सामने देखे बिना पानी में देखकर उस मछली की आंख में बाण मारना है, ऐसी शर्त रखी थी, जो उस मछली की आंख में बाण मार दे वह मेरी पुत्री द्रौपदी के साथ विवाह करे। तो सभा में एक से एक लोग आए थे, कहा जाता है उस सभा में दुर्योधन आए थे, कौरव आए थे, सभी वर्ण के लोग आए थे, और कहा जाता है कृष्ण और बलराम भी आए थे, विवाह करने नहीं देखने के लिए, अपनी बहन के लिए कौन सा वर चुन रही है उसे देखने के लिए आए थे। तब पांडवों ने सोचा कि चलो हमें भी यहां पर जाना चाहिए। देवी कुंती घर में कुछ काम कर रही थी और पांडव वहां पर ब्राह्मण के वेश में चले गए। महाभारत में वर्णन है सब लोग बैठे थे, आज तो मैं कृष्ण वेदा हम समिता नहीं सब कुछ जानने वाले हैं, परंतु फिर भी बलदेव जी को कहते थे भैया भैया वो सामने जो पांच लोग बैठे हैं क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये पांडव जैसे हैं? देखो वो मोटे मोटे बैठे हैं, क्या तुम्हें वो भीम के जैसे नहीं लग रहे हैं? बलदेव जी कहते हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, परंतु हमने तो उसकी लाश को देखी है, उसकी लाश को तो हम देख कर आए, तो वो कैसे जीवित हो सकते हैं? तब कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ हो सकता है। धीरे धीरे सब लोग उस स्वयंवर में भाग लिए, परंतु कोई उस मत्स्य को भेद नहीं न सका। जब कोई उस मछली की आंख को भेद न सका, तब अंत में अर्जुन खड़े हुए, ब्राह्मण के वेश में थे, कोई समझ नहीं पाया। अर्जुन आए और धीरे धीरे अपने गांडीर के बल से बिना देखे उस मछली की आंख को भेद दिया और सब लोग तालियां बजाने लगे। परंतु जैसे ही अर्जुन ने उस मछली को भेदा, तो सबके मन में प्रश्न उठा कि ब्राह्मण के लड़के में इतनी शक्ति बिना देखे मछली को भेद दे। तब सब लोगों ने अर्जुन का अंगूठा देख लिया, क्योंकि क्षत्रियो में बाण चलाते चलाते अंगूठा घिस जाता है। तब सब लोगों ने देखा कि वास्तव में ये ब्राह्मण नहीं, ये क्षत्रिय है। तब पूछा गया कि आप कौन हो, कौन हो? तब कह दिया कि हम और कोई नहीं, हम पांडव हैं और हम जीवित हैं। माइक में अनाउंसमेंट हुआ, अरे बाप रे बाप, पांडव जीवित है, पांडव जीवित है। दुर्योधन इत्यादि सब लोग निकल गए थे, वापस आए और देखिए तो पांडव तो जीवित हैं। इस प्रकार से द्रौपदी को स्वयंवर में जीता, विवाह किया, और भी बहुत कथा है महाभारत में। द्रौपदी को लेकर पांचों पांडव जब अपनी कुटिया में आए, तो अपनी माता को कहे कि माते माते, देखो हम क्या लाए हैं। देवी कुंती कुछ काम में व्यस्त थी, इसलिए कह दिया कि जो भी लाए हो बांट कर ले लो। महारानी कुंती के मुख से शब्द निकल गया तो वह सत्य हुआ। इसलिए द्रौपदी पांचों पति की पत्नी हुई। और क्योंकि अर्जुन और पांडवों के ससुर द्रुपद राजा थे और द्रुपद राजा का प्रताप चारों दिशा में था, दुर्योधन ने सोचा कि यदि हमने पांडवों को नहीं बुला लिया तो द्रुपद राजा हमारी पिटाई करेंगे। उनके भय से पांडवों को वापस बुला लिया और फिर पांडवगण इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। फिर भी दुर्योधन चैन से नहीं बैठा। अपने मामा शकुनी के छल के कारण बहुत बड़ी द्रुत कीड़ा हुई, जुआ खेला गया और धीरे धीरे करके पांडवों का सब कुछ ले लिया, इंद्रप्रस्थ ले लिया, अपना सभी अस्त्र शस्त्र सब कुछ लेकर अंत में द्रौपदी को भी दुर्योधन ने जीत लिया। महारानी कुंती याद करा रही है कि हे कृष्ण, असत सभाया वनवास पृच्छत, आपने उस असत सभा से, असतों की सभा थी वहां पर, सत कोई नहीं था, क्योंकि ऐसी असत सभा में दुर्योधन ने अपनी जांघ ठोककर कहा था कि द्रौपदी को ये लोग हार चुके हैं, इसलिए द्रौपदी को यहां पर लाओ। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि दुशासन जाओ, द्रौपदी को लेकर आओ। महाभारत में वर्णन है, द्रौपदी उस दिन रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, बाल बिखरे हुए थे। दुशासन द्रौपदी को लेने के लिए गया, द्रौपदी ने बहुत इनकार किया। बहुत बहुत इनकार करने पर जब द्रौपदी नहीं आई, तब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीट कर उस असत सभा में लेकर आया। और जब द्रौपदी को असत सभा में, उस सभा में, गुरुवंश की सभा में लेकर आए, तब दुर्योधन ने कहा कि अब इस द्रौपदी के वस्त्र निकालो, मैं इस द्रौपदी को नंगी देखना चाहता हूं। जिस समय दुर्योधन ने ऐसा आदेश दिया, महाभारत में वर्णन है कि उस समय उस कुरुवंश की सभा में 20,000 कुर्सी लगी हुई थी, 20,000 लोग बैठे थे, परंतु 20,000 लोग में से एक व्यक्ति भी यह नहीं बोला कि दुर्योधन आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते। आज के कलयुग में भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता है जो कार्य द्वापर युग में उस असत सभा में हुआ था। इसलिए कुंती उस सभा को असत सभा कह रही है। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, द्रौपदी दोनों हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र के पास गई। पिताजी, ससुर जी, ये क्या हो रहा है? आप अपने पुत्र को ना कहिए। परंतु वह दुष्ट पुत्र मोह में अंधा धृतराष्ट्र द्रौपदी की रक्षा करने के लिए विवश कुछ नहीं बोला। द्रौपदी पितामह भीष्म के शरण में गई। पितामह, कुरुवंश की लाज जा रही है, मुझे नग्न करने का प्रयास कर रहे हैं लोग, मेरी रक्षा करो। पितामह भीष्म अपना सिर झुका दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पितामह भीष्म ने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए पितामह भीष्म के शरीर में दुर्योधन का खून दौड़ रहा था, कुछ नहीं किया। सभी लोगों के शरण में गई, अपने पति के शरण में गई, कुछ नहीं कर सकती। पांचों पति के शरण में गई। तब कर्ण बोला था, ये पांच पांच पति की पत्नी नहीं, ये तो वेश्या। बहुत दुख, असद सभा, और सभी ओर से दुख, और द्रौपदी को कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और दुशासन, जिसमें 10,000 हाथी का बल था, 10,000 हाथी का बल वाला दुशासन एक अबला द्रौपदी की इज्जत लूट रहा है, उनकी साड़ी निकल रहा है। द्रौपदी ने सबके सबकी शरण में गई, किसी ने शरण नहीं दी। अंत में द्रौपदी अपनी शक्ति इस्तेमाल की, अपने हाथ से साड़ी को पकड़ के रखी कि मैं साड़ी उतारने नहीं दूंगी, परंतु 10,000 हाथी के बल के सामने द्रौपदी का बल क्या है? द्रौपदी नहीं पकड़ सकी। जब अंत में किसी का बल, किसी की शरण में शरण नहीं मिली, तब द्रौपदी को व्यास देव की कही हुई बात याद आई। कहा था कि द्रौपदी, जीवन में जब दुख आए, कष्ट आए, तब कृष्ण को याद करना, वे जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। द्रौपदी को याद आई व्यास देव की बात, और उस कुरुवंश की सभा में कहती हैं कि हे हस्तिनापुर में रहने वाले लोग, आप क्या जानो कि किसी स्त्री की लाज, मर्यादा और इज्जत क्या होती है? आप क्या जानो? अरे पानी के बीच में रहने वाला मेरा भाई जानता है इज्जत और लाज क्या होती है। इतना कहके द्रौपदी अपने दोनों हाथ ऊपर करके, हे कृष्ण द्वारका वासी, पाही पाही जगत पते, इतना कहते ही द्वारका में भगवान श्री कृष्ण सोने के आसन पर विराजित थे, उनके तीनों अंग फड़कने लगे। अपने आसन से भगवान श्री कृष्ण दौड़कर वहां से निकल गए द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। महाभारत में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण को लगा कि मुझे वहां पर जाने में देरी हो जाएगी, इसलिए भगवान दौड़ने लगे। गरुड़ जी कहे कि प्रभु आप मेरे पर बैठ जाओ, मैं आपको पहुंचा देता हूं। गरुड़ की स्पीड, गरुड़ की गति मन के समान तेज है। भगवान ने कहा, आज तेरी गति कम है, मेरी बहन मुझे याद कर रही है। भगवान को अपने पर विश्वास नहीं था, इसलिए भगवान ने वस्त्र को आदेश दे दिया कि जाओ द्रौपदी की रक्षा करो। महाभारत में वर्णन है, आकाश में तीनों चीज उड़ रही थी, आगे वस्त्र, पीछे भगवान और पीछे गरुड़ जी। और यहाँ पर दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचे, तब तक तो भगवान की साड़ी आ गई थी। दुशासन साड़ी खींचने लगा, खींचते 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 थक गया। कहाँ जाता है दुर्योधन अपनी जंगा ठोकते रह गया कि ये क्या कर रहे हो, जल्दी नग्न करो। परंतु दुशासन को समझ में नहीं आया ये साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। दुशासन 10,000 हाथी का बल रखने वाले दुशासन के मुख से फेंक निकल गए, परंतु वह साड़ी समाप्त नहीं हुई और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा द्रौपदी की लाज रख गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
हरे राम हरे राम, राम राम हरे।
भगवान ने द्रौपदी की राज लाज रख ली। कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तब हाथ ऊपर क्यों करते हैं? परंतु हाथ ऊपर करने का भाव यही है कि द्रौपदी सभी के शरण में गई, किसी ने शरण नहीं दिया, अंत में भगवान को याद किया। भाव यह है कि प्रभु इस संसार में कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता है, आप एकमात्र मेरे सहारे हो, इसलिए हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, एक भक्त की विजय हुई और भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। प्रकट हुए तो प्रेम की गति थोड़ी टेढ़ी होती है। द्रौपदी कृष्ण को कहने लगी, भैया यदि आपको मेरी रक्षा करनी ही तो इतना देर क्यों आए, इतना लेट क्यों आए, इतना रोना पड़ा और इतना कुछ क्या कुछ नहीं करना पड़ा तब जाकर, यदि रक्षा करनी ही थी तो जल्दी आ गए होते। तब भगवान तो बोलने में इतने पटु हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहना मैं तो तुम्हारे बाजू में खड़ा था, परंतु तुमने कहा कि हे कृष्ण द्वारका वासी पाई पाई जगतपति, तुमने द्वारका के कृष्ण को बुलाया इसलिए मुझे पहले द्वारका जाना पड़ा और द्वारका से यहाँ आया इसलिए मुझे देरी हो गई, नहीं तो नमे भक्ता प्रणश्यति, मैं मेरे भक्त की रक्षा करने में कभी देरी नहीं करता हूँ, क्योंकि भक्त मुझे प्रेम करते हैं और जो प्रेम करते हैं उसके हाथों तो मैं बीत जाता हूँ। इसलिए भक्त कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान टलते भगवान कभी देख नहीं सकते, क्योंकि भक्त की लाज भगवान की लाज होती है। तो यहाँ पर देवी कुंती याद करा रही हैं कि हे कृष्ण आपने ही असत सभायाम उस असत सभा से मेरी पुत्र वधु द्रौपदी की रक्षा की थी, यदि आप न होते तो न जाने हम किसी को मुंह दिखाने के लायक न होते। एक से एक उपकार भगवान को भगवान की याद करा रही असत सभाया, असत सभा से आपने रक्षण किया। वनवास कृच्छत, इतना ही नहीं वनवास में भी आपने हमारी कितनी रक्षा की। वास्तव में पांडवों को वनवास दिया गया था, वनवास और एक साल का अज्ञातवास, और एक दिन की बात दुर्वासा ऋषि घूमते घूमते दुर्योधन के पास आए और दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भोजन इत्यादि करने के लिए बुलाया। हमारे इतिहास में ये दुर्वासा ऋषि एक ऐसे ऋषि है जो क्रोधित होने में और श्राप देने में नंबर वन है, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत श्राप दे देते हैं। तो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को बुलाया और ये दुर्वासा ऋषि की एक विशेषता है, जब भी चलते हैं तो अकेले नहीं चलते हैं, अपने कम से कम 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर चलते हैं। तो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को बुलाया और अपने 10,000 शिष्यों के साथ 56 भोग का भोजन कराया और बहुत सुंदर भोजन किया। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर दुर्योधन को कहे कि हम आपके इस 56 भोग से प्रसन्न हैं, बताओ आपको क्या चाहिए। दुर्योधन ने सोचा कि पांडव लोग वनवास में हैं इसलिए फक्कड़ बाबा होंगे, उनके पास तो कुछ होगा नहीं, यदि दुर्वासा ऋषि को उनके घर पर भेज दूं और वे लोग भोजन नहीं करा पाएंगे तो ये उनको श्राप दे देंगे तो हमारा अच्छा होगा भला होगा, दुश्मन को श्राप मिलना है तो सबसे बड़ी बात है। तब दुर्योधन ने कहा कि यदि आपको देना ही है तो एक काम करो, हमारे प्रेमी स्नेही स्वजन पांडव अभी वन में हैं, आपने जैसी कृपा हम पर की वैसी कृपा हमारे भाई पांडवों के ऊपर भी करो, उनके घर जाओ और उनके घर पर भोजन करो। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है। दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को लेकर पांडव जिस कुटिया में रह रहे थे उस कुटिया में गए और उस समय ऐसे तो द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था और वो पात्र में क्षय नहीं होता था, जो व्यक्ति एक टाइम पर जितना खा सके उतना निकल सकता था, परंतु उसकी विशेषता यह थी कि उसको धोने के बाद उसमें से कुछ नहीं निकलता था फिर दूसरे टाइम पर। तो बात यह थी कि ये सब लोग भोजन करके उस पात्र को धो करके बैठ गए थे और उसी वक्त दुर्वासा जी पहुंचे और दुर्वासा जी युधिष्ठिर से मिलकर कहे कि युधिष्ठिर हम यहाँ पर आए हैं आपके घर पर, हमें बहुत भूख लगी है, आप हमें भोजन कराओ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है हम आपके लिए भोजन तैयार करते हैं। तब दुर्वासा जी ने कहा कि एक काम करो, हम बाजू के सरोवर में स्नान करते हैं, स्नान करके जब हम आए तब तक भोजन आप तैयार रखिए। दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को लेकर सरोवर में स्नान करने के लिए गए और यहाँ पर सभी पांडव बैठकर चिंता में अब क्या किया जाए, आमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है, वादा किया है कि हम आपको भोजन कराएंगे और यदि भोजन नहीं करा पाए तो श्राप दे देंगे। और भोजन कराने के लिए अक्षय पात्र तो साफ हो चुका है, क्या करे। तो एक भक्त का स्वभाव होता है, भक्त के जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, तो भगवान को याद करते हैं। तुरंत द्रौपदी ने अपने भाई कृष्ण को याद किया, कृष्ण को याद करते ही कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो बहना क्या है, सारी बात बताई। दुर्वासा जी आए हैं, उसे भोजन कराना है। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, वो अक्षय पात्र कहाँ है। द्रौपदी ने कहा वो तो मैंने धोकर रख दिया है। कृष्ण ने कहा जो भी है मुझे जरा दो। द्रौपदी ने अक्षय पात्र दिया। कहा जाता है कि उस अक्षय पात्र में एक चावल का दाना बचा था। भगवान श्री कृष्ण ने वह चावल का दाना खाया और खाकर डकार लगाई। भगवान ने क्या डकार लगाई, पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव तृप्त हो गए। सभी जीव आकंठ यहाँ तक भोजन करके जितना तृप्त होते सब लोग तृप्त हो गए और एक साथ सारे ब्रह्मांड में रहने वाले सभी लोगों ने डकार लगाई। और यहाँ पर दुर्वासा जी अपने शिष्यों को कहते हैं कि आपको कुछ महसूस हुआ। कहते हाँ, हमारा पेट तो पूरा भर रहा है, पूरा भरा हुआ है। कहते अभी तो एक ग्लास पानी भी नहीं चल सकता है। दुर्वासा जी कहते मुझे भी ऐसा हो रहा है। सब लोग कहने लगे, आपस में बात करने लगे, भूख तो हमें लगी नहीं रही। और यहाँ पर कृष्ण ने भीम को कहा कि भीम एक काम करो, जाओ दुर्वासा जी और उसके शिष्य को लेकर आओ। भीम ने कहा परंतु कृष्ण यहाँ पर कुछ बना तो नहीं है। कृष्ण ने कहा तुम जाकर देखो तो सही, वे लोग कैसे आते हैं, मैं जरा देखना चाहता हूँ। भीम जा रहे थे तो कृष्ण ने कहा एक काम करो, एक गदा साथ में लेकर जाओ। अब भीम गदा को लेकर ऐसे ऐसे चल रहे थे, हमारे आशीष प्रभु की जैसे। भीम दूर से आ रहे थे और दुर्वासा जी ने भीम को देख लिया कि देखो ये हमें लेने के लिए आ रहा है और यदि हमने ना कर दिया तो इसी गदा से कोई बचेगा नहीं। अब जिसको बचना है अपना अपना रास्ता ढूंढ ढूंढ कर भागने लगो, मैं तो यहां से भागा। इतना कह के दुर्वासा जी और उनके 10,000 शिष्य सब लोग वहां से भाग गए। भीम ने देखा ये लोग भाग क्यों रहे हैं, भीम भी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। सब लोग सोचे कि अब तो हमें मारने के लिए ही भाग रहे हैं, कोई वापस नहीं आया। भक्तों कथा तो बहुत अच्छी है और ये कथा हमने बहुत बार सुनी भी है, परंतु इस कथा से सिद्धांत लेने जैसा जो है वो यह है कि भगवान कृष्ण जब तृप्त होते हैं तब इस संसार के सब लोग तृप्त हो जाते हैं। प्राय कुछ लोग पूछते हैं आप कृष्ण की ही भक्ति क्यों करते हो, परंतु कृष्ण सभी लोगों के मूल है। कुछ लोग इस देवता की भक्ति करते हैं, कोई ये देवी की भक्ति करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, परंतु देवी देवताओं के भी मूल यदि कोई है तो वो है कृष्ण। कुछ लोग पितरों के भक्त होते हैं, कुछ लोग माताजी के भक्त होते हैं, कुछ लोग देवता के भक्त होते हैं, परंतु आप कितने देवताओं की भक्ति करोगे। 36 करोड़ तो ऑलरेडी है ही, कितने कितने देवताओं को प्रसन्न करोगे। परंतु शास्त्र का एक सिद्धांत है कि यदि आप केवल कृष्ण को प्रसन्न कर लो, कृष्ण को संतुष्ट कर दो, तो सभी देवी देवता, सभी पितृ और संसार में रहने वाले सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे कृष्ण को प्रसन्न करने से, क्योंकि कृष्ण सबकी आत्मा है, सब लोग कृष्ण से प्रकट होते हैं। यथा करोमूल निशेच नेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा, जैसे पेड़ के मूल में पानी डालने से उसकी डालियों में, पत्ते में, फल में पानी पहुंच जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति पेड़ के जड़ में पानी डालता है, परंतु मूर्ख क्या करते हैं, पत्ते के ऊपर पानी डालते हैं, कुछ मूर्ख फल के ऊपर पानी डालते हैं। तो देवी देवताओं को प्रसन्न करना, पितरों को प्रसन्न करना वैसा ही है जैसे पत्ते के ऊपर और फल के ऊपर पानी डालना। मैं नहीं कहता हूं कि देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करना चाहिए, परंतु सबको प्रसन्न करने के लिए, पूरे पेड़ को पानी पहुंचाने के लिए जड़ में पानी डालना होगा। जड़ में पानी डालने से सभी डालियों में, पत्ते में और सभी फल में पानी पहुंच जाता है। वैसे ही कृष्ण को प्रसन्न करने से समस्त देवी देवता, समस्त पितृ और समस्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे इस्कॉन संस्था के वर्तमान आचार्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि इस शरीर को मजबूत बनाना है, शरीर को तंदुरुस्त बनाना है, तो भोजन आहार पेट में डालना होगा। अब कुछ लोग सोचे कि इस हाथ को तंदुरुस्त बनाना है, हाथ को मजबूत बनाना है, तो फिर इस हाथ को काट कर उसमें भोजन नहीं भरा जाएगा। पांव को मजबूत बनाना है तो पांव को काट कर उसमें भोजन नहीं डालना होगा। भोजन केवल पेट में डालो, हाथ पांव आंख कान सब कुछ तंदुरुस्त हो जाते हैं। वैसे ही सभी देवी देवता, सभी पितृ, सभी मनुष्य को प्रसन्न करना है तो पेट को, उदर को अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। तो सिद्धांत यह है, देखिए हमें जो भी कार्य करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। मैं आपको सिद्धांत भी दे रहा हूं और शास्त्र की विलक्षण घटना भी दे रहा हूं। सिद्धांत यह है, यथा करो मूल निश्चेच नैन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथे इंद्रियाणां तथेच सर्वा अर्हणम अच्युतेज्या। अच्युत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सब लोग प्रसन्न होते हैं। ये सिद्धांत है, ये शास्त्र की बात है। और कथा क्या है? कथा आपके सामने प्रकट है। भगवान श्री कृष्ण ने एक दाना खाया, भगवान ने डकार ली तो संसार के सब लोग संतुष्ट हो गए। तो इस प्रकार हमें यदि भक्ति करनी है तो कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण ही हमारे माता, धाता, पिता, सब कुछ कृष्ण है। साक्षात अर्जुन का यह साक्षात्कार है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी, ये प्रभु आप ही गतिर हो, आप ही साक्षी हो। परम नामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम देवम। आप ही परम पुरुष हो, आप ही पिता हो, आप ही सब कुछ हो। और ये केवल अर्जुन नहीं, आहुत्वाम ऋषि सर्वे देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं चैव ब्रविषि में। ये असित, ये देवल, ये व्यास, ये सबका मत है कि कृष्ण ही परम ईश्वर है, परम भगवान है। कृष्ण को प्रसन्न करने से, कृष्ण को संतुष्ट करने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रही हैं कि हे कृष्ण, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात असत सभायाम वनवास कृच्छत। हे प्रभु, आपने विष से भीम की रक्षा की, अग्नि से पांडवों की, मेरे पुत्रों की रक्षा की, उस असुर से रक्षा की, असत सभा से द्रौपदी की रक्षा की, और वनवास से दुर्वासा मुनि के द्वारा, दुर्वासा मुनि से मेरे पुत्रों की रक्षा की। आगे कहती हैं, मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रो। इतना छोड़िए, आपने अभी अभी महा महारथी, अति रथी महारथियों से मेरे पुत्रों की रक्षा की। मृदे मृदे उस महाभारत के युद्ध में एक से एक वीर रथी, अति रथी महारथी थे। और उसमें भी पितामह भीष्म महारथी में जिसकी गिनती होती है, प्रतिदिन 20,000 अति रथी को मारते थे गिन गिन कर। पितामह भीष्म का वर्णन आता है कि पितामह भीष्म एक ऐसे योद्धा थे कि पूरे कौरव और पांडवों की सेनाओं को एक ओर रखा जाए और एक ओर केवल पितामह भीष्म को रखा जाए, सबको लड़ने में समर्थ थे, सबके साथ इतने प्रतापी थे। परंतु ऐसे पितामह भीष्म से अर्जुन की रक्षा की। महाभारत में यह घटना है कि एक समय की बात, कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में 9वें दिन की बात है। 9 दिन तक युद्ध चला और 9वें दिन की रात को दुर्योधन पितामह भीष्म के शिविर में गया और जाकर पितामह भीष्म को उकसाने लगा के आप मेरी सेना में हो परंतु फिर भी आप पक्ष अर्जुन का ले रहे हो, पांडव का ले रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं आप इतने बड़े योद्धा हो, फिर भी अब तक आपने उस पांडवों में से किसी एक को भी नहीं मारा, आप समर्थ हो फिर भी आपने नहीं मारा। तब पितामह भीष्म बहुत क्रोधित हुए जब उन पर आरोप लगाया गया। तब दुर्योधन को कहने लगे कि दुर्योधन या तो कल के दिन के युद्ध में यह पितामह भीष्म नहीं या तो पांडवों में से कोई एक नहीं। भीषण प्रतिज्ञा आपने जीवन की तीसरी प्रतिज्ञा ले चुके। दुर्योधन को कहा कि जाओ और कल सुबह अपनी पत्नी को भेज देना, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तुम अमर हो जाओगे। दुर्योधन प्रसन्न हुए, घर पर चले गए। यहां पर भगवान श्री कृष्ण दौड़कर पांडवों के पास आए और आकर कहने लगे, पितामह भीष्म ने तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ली है कि तुम पांचों में से एक को मारना है। कल के दिन में पांच में से एक गए। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, प्रभु उसमें हम क्या करें, आपको जो करना है करो, आपके भक्त की लाज आपके हाथ में, यदि हम मर गए तो आपका नाम बिगड़ेगा कि पांडव कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण के संरक्षण में होते हुए भी मर गए, आप अपनी लाज बचाओ, हमें कोई पड़ी नहीं है। वास्तव में कुरुक्षेत्र की भूमि के युद्ध में पांडव केवल बाण चलाते थे, उनकी रक्षा करने का भार तो कृष्ण के हाथ में, क्योंकि पांडवों ने अपना सारा भार अब सौंप दिया, भार भगवान तुम्हारे चरणों में, समस्त भार भगवान के चरणों में सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडव तो सो गए, भगवान नहीं सो सके, ये इसका क्या करूं मैं, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा और पितामह की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं जा सकती, ये मार डालेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण रात को 1 बजे द्रौपदी को उठाए, जगो जगो तुम, कहा कि भैया आधी रात को क्या काम है मेरा, तुम जगो मेरे साथ चलो, पहले स्नान करके आओ। 1:30-2:30 बज चुके थे और 3:30 बजे भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म की शिविर की ओर जाने लगे। चलते चलते बीच रास्ते में भगवान ने कहा, खड़े रह जाओ, खड़े रहो, चप्पल निकालो। भगवान ने द्रौपदी की दोनों चप्पल अपने हाथ में ले ली, भगवान अपने भक्त के चप्पल अपने हाथ में ले लेते हैं और कहा, आप धीरे से चलो, धीरे 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 चले। उस समय पितामह भीष्म ध्यान में बैठे थे, भगवान ने द्रौपदी को इशारा किया कि आगे चले जाओ और प्रणाम करो। पितामह भीष्म ध्यान में बैठे थे, द्रौपदी ने आकर प्रणाम किया, द्रौपदी के घुंघरू का आवाज आया, प्रणाम करने का आवाज आया, पितामह भीष्म ने कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। पितामह भीष्म की आंख खुली और देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो द्रौपदी, वहां पर मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ली है और यहां पर वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। पितामह भीष्म समझ गए इसमें कृष्ण का हाथ है, बताओ कृष्ण कहां है। द्रौपदी तो बोल न सकी, पितामह भीष्म बाहर जाकर देखे तो द्रौपदी के चप्पल को हाथ में लेकर ऐसे दबाए हुए खड़े थे। केशव कृष्ण समझ गया है, तुम्हारा ही काम है। तब भगवान ने पितामह को प्रेम से कहा, पितामह अब आप ही तय कीजिए कि आपकी प्रतिज्ञा बड़ी है या आपका वरदान बड़ा है। आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करोगे कि आपने अभी जो आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती, इसका पालन करोगे। तब पितामह भीष्म ने अपने जीवन में चौथी प्रतिज्ञा ली कि आज के युद्ध में, आज सुबह के युद्ध में या तो पांडवों में से किसी एक को मारूंगा या तो केशव मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को तुड़वा दूंगा, क्योंकि आप मेरी प्रतिज्ञा तुड़ाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने अपने घर चले गए और फिर सुबह 8 बजे सब लोग कुरुक्षेत्र की भूमि में धमाधार युद्ध में आए और उस दिन पितामह भीष्म अर्जुन के रथ को ढूंढ रहे थे, कहां है अर्जुन, और ढूंढते ढूंढते अर्जुन के रथ के सामने आए। महाभारत में वर्णन है कि उस दिन पितामह भीष्म ने अपनी पूरी स्फूर्ति के साथ युद्ध किया और अर्जुन को उस 18 दिन के युद्ध में पितामह भीष्म जब सामने आए उस दिन पसीना निकल गया, पसीना छूट गया। पितामह भीष्म इतनी तेजी से बाण निकालते थे, इतनी तेजी से, महाभारत में वर्णन है, जैसे मान लीजिए कोई दिया आप घुमा रहे हो, जब वह दिया तेजी से घुमाओ तो एक चक्र बन जाता है। पितामह भीष्म बाण ऐसे निकाल रहे थे, उसके हाथ का एक चक्र बन गया और अर्जुन असमर्थ हुए। एक से एक बाण चलाने लगे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, यदि मैंने कुछ नहीं किया तो यह अर्जुन आज गया, ये पितामह भीष्म आज नहीं छोड़ेंगे, प्रतिज्ञा लेकर आए हैं। भगवान ने सोचा कि अब क्या करूं, अर्जुन के प्राण को छुड़वा दूं या मैं मेरी प्रतिज्ञा छुड़वा दूं। भगवान की प्रतिज्ञा थी कि कुरुक्षेत्र की भूमि में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने सोचा मेरा नाम बिगड़े तो बिगड़े, परंतु मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। भगवान रथ से नीचे उतरे, रथ का पहिया हाथ में लिए और पितामह भीष्म के ऊपर चला दिए। पितामह भीष्म भी वहां पर गिरे। और कहा जाता है कि उस समय भगवान के आदेश से अर्जुन के उस तीक्ष्ण बाण से पितामह भीष्म का शरीर भेदन कर दिया और बाण के शिया पर पितामह भीष्म सो गए। पांचों पांडवों में से एक बचने वाला नहीं था, परंतु कृष्ण की कृपा से प्रभु महारानी कुंती याद करा रही हैं कि मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रे, प्रभु आपकी कृपा से हमारे पुत्र पांडव उन महान रथी अतिरथि महारथियों से बच गए। और महारथास्त्रे उस कुरुक्षेत्र की भूमि में एक से एक बाणधारी थे, एक से एक बाण धारण करने वाले थे, परंतु आपने उस कुरुक्षेत्र की भूमि से मेरे पुत्र की रक्षा की। वास्तव में दुर्योधन की सेना में योद्धाओं की कुछ कमी नहीं थी। पितामह भीष्म जैसे ही एक योद्धा थे, कर्ण, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र कवच, जो कर्ण के रूप में जन्म लिया था कुंती के ही गर्भ से, और जो पांडवों का वास्तव में तत्व से बड़ा भाई था कर्ण, और कर्ण के पास इतनी शक्ति थी वे अकेले पांडवों को भारी हो सकता था। कर्ण के जीवन में वर्णन है, कर्ण इतना धमाधार युद्ध किया महाभारत में कि वास्तव में भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए। वैसे तो कर्ण के जीवन में बहुत बहुत दुर्घटना आई, फिर भी कर्ण बहुत भीषण युद्ध कर रहा था। महाभारत में गिनाया गया है कि कर्ण के जीवन में कितनी दुविधा आई। सबसे पहले कर्ण धनुष विद्या सीखने के लिए परशुराम जी के पास गया और परशुराम जी के पास जाकर झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। परशुराम जी का एक प्रण था कि मैं ब्राह्मण को ही धनुष विद्या सिखाऊंगा। वास्तव में कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं थे, तो ब्राह्मण कहकर सारी धनुष विद्या सीख लिए। एक दिन की बात, कर्ण के गोद में सिर रखकर परशुराम जी सो रहे थे और उतने में एक कीड़ा आया और कर्ण की जांघ पर काट दिया और उसे खून निकलने लगा। धीरे धीरे करके जब बहुत खून निकला, कर्ण हिले नहीं, क्योंकि हिले तो गुरु जी की नींद टूट जाए, हिले नहीं। जब खून बहुत निकल गया और परशुराम जी को स्पर्श हुआ, थोड़ा गरम गरम का एहसास हुआ, तब वे जग गए। जग कर देखे कि इतना खून बह गया, तब पूछा कि आपको इतना खून निकला तो मुझे जगा देना था। कर्ण ने कहा कैसे जगाऊं, आपकी निद्रा में बाधा डालना नहीं चाहता। तब परशुराम जी ने कहा कि ब्राह्मण के पुत्र में इतनी सहन शक्ति कभी नहीं हो सकती, सच सच बताओ तुम कौन हो, मैं तो अभी श्राप दे दूंगा। तब कर्ण ने कहा गुरुजी मैंने आपसे झूठ बोला, मैं सूत पुत्र हूं। तब परशुराम जी ने श्राप दे दिया कि मैंने जितनी धनुष विद्या सिखाई है, काम आने पर, मौका आने पर सारी धनुष विद्या भूल जाओगे। इतना बड़ा श्राप था, फिर भी कर्ण इतना माहिर था। ये तो एक दुर्घटना, और एक दुर्घटना हुई। कर्ण जन्म से कवच और कुंडल धारण करके जन्म लिया था, और जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल था, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था। भगवान को पता चला, तब इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के शिविर में गए, और कर्ण का नाम दानवीर में आता है। यद्यपि कर्ण समझ गए कि अर्जुन के गुरु इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर मेरे कवच और कुंडल लेने के लिए आए हैं, कर्ण को पता था, फिर भी कर्ण ने कहा कि मैं जानता हूं आप इंद्र हो, मेरे कवच और कुंडल लेने आए हो, परंतु आपका नहीं, आपके ड्रेस का मैं मान रख रहा हूं। ये आप जो ब्राह्मण का वस्त्र पहनकर आए हो, वे महान वस्त्र है। कर्ण ने दे दिया कवच और कुंडल, ये दूसरी दुर्घटना। तीसरी दुर्घटना कर्ण के जीवन में, कर्ण के पास पांच बाण थे और पांचों बाणों के ऊपर पांचों पांडवों का नाम लिखा था। और एक दिन दुर्योधन ने कहा कि कर्ण अब कितनी देर है पांडवों को मारने के लिए। कर्ण ने दिखाया ये पांच बाण पांचों पांडवों को मारने के लिए रखा हूं। भगवान को पता चला, कहा कि उसने पांच बाण रखे हैं, क्या करे। अब आप ही कुछ सोचो, भगवान को कहने लगे। तब भगवान ने कुंती देवी को भेजा। कुंती देवी कर्ण के शिविर में गई और सच सच भेद खोल दिया कि कर्ण वास्तव में तुम सूत पुत्र नहीं, तुम मेरे पुत्र हो। कर्ण चरणों में गिर गया, मां आप मेरी मां हो। हाँ, मां ने कर्ण से कहा कि बेटा मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। कर्ण ने कहा क्या चाहिए, मांग लो जो चाहिए। तब कुंती ने कहा कि बेटा वो जो पांच बाण पांडवों को मारने के लिए रखे हैं वो पांचों बाण मुझे दे दो। तीसरी दुर्घटना, कर्ण ने पांचों बाण दे। फिर भी कर्ण के पास ऐसा एक बाण था जो अमोघ बाण था, स्पेशल अर्जुन के लिए रखा था। दुर्योधन को दिखाया था ये अर्जुन के लिए। भगवान कृष्ण इस बात को भी जान गए कि अभी भी एक बाण बचा कर रखा है स्पेशल अर्जुन के लिए। तब क्या करे, तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम पुत्र घटोत्कच को इतना उपसाया कि रात्रि युद्ध हुआ और भीम पुत्र घटोत्कच रात को युद्ध करने लगे और दुर्योधन की सारी सेना का विनाश करने लगे। धीरे धीरे करके सारी सेना का विनाश होने लगा। दुर्योधन कितना भी बाण मारे कुछ नहीं लग रहा था। तब कर्ण के शिविर में गया, कहा कर्ण मित्र वो जो अमोघ बाण है इसे मारो। कर्ण ने कहा मैं नहीं मारूंगा, ये बाण स्पेशल अर्जुन के लिए रखा है। तब दुर्योधन ने कहा कि कल सुबह होगी तो आप अर्जुन को मारोगे, ये घटोत्कच रात को ही सब सफाया कर देगा, मारो इसे। मित्र के कहने पर, दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने वह अपना अंतिम अमोघ बाण घटोत्कच के ऊपर मारा और उसे उसका वध कर दिया। पांच पांच दुर्घटना कर्ण के जीवन में, फिर भी महान योद्धा था कर्ण। और एक दिन अर्जुन के सामने कर्ण का सामना हुआ, कहते मृदे मृदे महारथास्त्रे। और अर्जुन के सामने आते ही कर्ण ने धमाधार युद्ध किया। कहा जाता है कि कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए इतना क्रोध में आकर कान तक प्रत्यंचा खींचकर अर्जुन के गले का निशाना लेकर कर्ण ने बाण मारा। भगवान समझ गए कि यह बाण अर्जुन के गले को लेकर उड़ जाएगा। भगवान सोच में पड़ गए क्या करूं। कर्ण के धनुष से वह बाण निकल गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने चारों घोड़ों के ऊपर मुष्टिका का प्रहार किए, घोड़े घुटना टेक गए, रथ डेढ़ फुट नीचे और कर्ण का बाण अर्जुन के मुकुट को लेकर उड़ गया। हरे कृष्णा 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 हरे राम हे कृष्ण। मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रे, आपने मेरे पुत्रों की बारंबार रक्षा की। और इतना ही नहीं, अभी अभी द्रोणस्य तच्चास्म हरे भी रक्षिता। और अभी अभी द्रोणी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने मेरे बालकों की रक्षा की। हे कृष्ण आपकी बहुत बहुत कृपा हम पर है, आपने पग पग पर हमारी रक्षा की। भक्तों, महारानी कुंती के जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए, यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान पल पल में हमारी रक्षा करेंगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, परंतु यदि भगवान हमारे साथ हो तो कठिनाई कभी नहीं आएगी। नहीं तो आप कोई व्यक्ति कितना भी सेफ रहे, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बस में ट्रैवलिंग नहीं करेंगे क्योंकि बस में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, हम ट्रेन से ट्रैवलिंग करेंगे। ट्रेन हम थोड़ी ना स्वयं चलाएंगे, हम तो सोते रहेंगे, एक चलाने वाला एक भी झपके आ गई तो ट्रेन भी गई, ट्रेन की पटरी खुल गई तो ट्रेन गिर जाती है, उसमें भी अकस्मात। तो कुछ सोचते हैं हम ट्रेन में नहीं, हम फ्लाइट में प्लेन में सफर करेंगे। प्लेन का भी कोई भरोसा नहीं है कब गिर जाए, भरोसा। कुछ लोग सोचे हम किसी वाहन में जाएंगे ही नहीं, हम फुटपाथ पर चलेंगे। अरे आप कितना भी सेफ रहो, कितना भी फुटपाथ पर चलो, दारू पीकर कोई ट्रक चला रहा है और आप पर चढ़ा दिया तो किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए यदि भगवान हमारे साथ हैं तो निश्चित हमारी रक्षा करेंगे, जैसे पांडवों की रक्षा की। निश्चित भगवान ने पांडवों की रक्षा की है, वैसे यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो वे हमारी रक्षा करेंगे। कुंती महारानी ने बहुत सुंदर भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ जी, अब बहुत प्रार्थना हो गई, आपको क्या चाहिए? आपको अभी भी क्या चाहिए, बताओ आप क्या चाहती हो? तब महारानी कुंती कल भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगेगी जो हमें भी मांगना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा। तो कुंती महारानी भगवान से क्या मांगती हैं, और भी बहुत बहुत श्लोक है कुंती महारानी की प्रार्थना में। आप सब लोग कल आइए, इसे सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंद की।